ओम शांति। थोड़ा मुस्कुरा के प्रेम पूर्वक कहेंगे ओम शांति, थोड़ा प्रेम घोल कर कहेंगे ओम शांति। वाह, अब आपके बाजू में जो आपके प्रियजन बैठे हैं उनको भी थोड़ी ओम शांति कर लीजिए। थैंक यू। कहते हैं, किसी ने खूब कहा है, शिव की ज्योति से नूर मिलता है, शिव की ज्योति से नूर मिलता है, परमात्मा की संतानों को सुकून मिलता है, परमात्मा की संतानों को सुकून मिलता है। जो भी आता है भगवान शिव के द्वार, जो भी आता है भगवान शिव के द्वार, सभी को फल जरूर मिलता है। वाह वाह तो कर ही सकते हैं। थैंक यू। और बहुत गिने चुने नायाब हीरे ही यहाँ पहुँचे हैं। सवेरे हमारी सुदेश दीदी जी कह रही थी कि पूरे भारतवर्ष से चुन चुन कर हीरे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हीरों की कुछ माला बनी हुई है, पर मुझे लगता है कुछ मणके कुछ उसमें से हीरे अभी बाहर हैं, कुछ ही पलों में आ जाएंगे। पर मैं बड़े प्यार से सम्मान से स्नेह से आज की सुनहरी धूप के बाद इस सुनहरी शाम के संगम के समय इस सत्र का शुभारंभ करती हूँ। आप सबका सबसे पहले तालियों से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आपके लिए कहूँगी आप बहुत विशेष से विशेष हैं। जैसे कहते हैं देश में भारत देश का महत्व है, फल में श्रीफल का महत्व है, शास्त्रों में गीता का महत्व है, इसी तरह कई सारे वर्ग हैं और उसमें मीडिया वर्ग का अपना विशेष महत्व है। और आज आप सब इस सत्र के लिए अपनी नींद को त्याग कर आराम को त्याग कर यहाँ पहुँचे हैं। आपको सलाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, आभार करती हूँ कि आप इस सत्र की शोभा बढ़ाने के लिए पहुँचे। मैं पूछना चाहूँगी सबने चाय कॉफी पी, सबको मिली? वाह, कहते हैं जीवन में अच्छी चाय और अच्छी राय मिल जाए इससे बड़ा कुछ नहीं है। वाह, तो आइए मैं इस सत्र का शुभारंभ करती हूँ और पूछना चाहूँगी आप सब कल से यहाँ ठहरे हैं पहुँचे हैं, कैसे हैं सब? ठीक ठाक है, थकान तो नहीं हो रही है? ब्रह्मा कुमारीज में आके हमने सीखा है, जाना है जब कोई आपसे पूछे कैसे हैं, क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, तो बड़ा अच्छा आंसर यहाँ सिखाया जाता है। कहते हैं कोई पूछे क्या हालचाल है तो कहना है हाल खुशहाल है। हाल आप भी दोहरा सकते हैं, हाल खुशहाल है और चाल फरिश्तों की है। फरिश्ता माना मसीहा, जो हमेशा लोगों की मदद करे, लोगों के लिए अपने जीवन से कुछ पल निकाल कर लोगों की सेवा में लगाए। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप वो फरिश्ते बन सकते हैं, आप वो फरिश्ते हैं जो अपने वैल्यू बेस्ड प्रोफेशन से, पीसफुल लाइफ से अनेक आत्माओं के जीवन में परिवर्तन लाने के निमित्त बन सकते हैं। तो आइए हम आज के इस सत्र को, जिसका बहुत सुंदर विषय है मीडिया की नैतिकता, जवाबदेही और स्वमूल्यांकन, मीडिया एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, इस सब्जेक्ट पर बहुत सुंदर अनुभव युक्त विचार सुनेंगे। आज हमारे बीच इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, हम सबका ध्यान इस ओर खिंचवाने के लिए इस सुंदर विषय की आवश्यकता क्यों आन पड़ी, इस पर अपने बहुत गहरे और सारयुक्त विचार रखने के लिए मीडिया जगत के नायाब हीरे अनुभवी वक्तागण यहाँ इस सभा में बहुत देर से पहुँच चुके हैं। हम तहे दिल से दोनों हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और स्नेह पूर्वक सम्मान के साथ मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं। आज के सत्र की सभी मंगल मूर्तियों को जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं मंच पर आह्वान करती हूँ। आप मंच पर पधारें और अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करें। कहते हैं यह जिंदगी एक गणित है जिसमें कुछ अच्छे दिव्य लोगों को जोड़ा जाता है, सुखों का गुणा किया जाता है, दुखों का भाग दिया जाता है और अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभवी वक्ताओं को जोड़ने के लिए, सुनने के लिए मैं मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। मैं बुलाना चाहूंगी आदरणीय राजयोगिनी बी के उर्मिला दीदी जी, एसोसिएट एडिटर ज्ञानमृत मैगजीन शांतिवन से हमारे बीच हैं। आपसे आग्रह है कि आप मंच पर पधारें और अपना सम्माननीय स्थान ग्रहण करें। राजयोगिनी उर्मिला दीदी जी, मैं मंच पर आज के सत्र के गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता राजेश राजौरे जी, आपको भी सम्मान के साथ मंच पर सादर आमंत्रित करती हूँ। रेसिडेंट एडिटर दैनिक देशोन्नति खामगांव महाराष्ट्र से हमारे बीच पहुँचे हैं, आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी देवी बहन डॉक्टर उर्वशी परमार जी, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल से हमारे बीच हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब तालियों में साथ देंगे तो थोड़ा आनंद बना रहेगा, उम्मीद जगी रहेगी। और मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की कीनोट स्पीच के लिए राजयोगी भ्राता बी के सुशांत भाई जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग दिल्ली से हमारे बीच हैं, आपका भी मंच पर सादर अभिनंदन है। साथ साथ मैं सम्मान के साथ पुकारना चाहूंगी भ्राता उमानाथ सिंह जी, सीनियर एडिटर डीडी न्यूज प्रसार भारती दिल्ली से हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों से भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मैं सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी भ्राता आशुतोष ओझा जी, न्यूज एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड नोएडा से हमारे बीच पहुंचे हैं, आपका भी तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत है। मैं बड़ी ही श्रद्धा से और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी राजयोगिनी वरिष्ठ दीदी बी के शकू दीदी जी, जो हमारे बीच मुंबई से घाटकोपर से सब जोन इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। सकू दीदी जी का मंच पर अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं विशेष रूप से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बुलाना चाहूंगी हमारी स्नेही देवी बहन शेफाली गुप्ता जी, डायरेक्टर एंड एडिटर दखल न्यूज चैनल भोपाल से हमारे बीच हैं, जोरदार तालियों से आपका भी मंच पर बहुत बहुत स्वागत और सत्कार है। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस कार्यक्रम के विशेष हमारे मेहमान आदरणीय भ्राता प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह जी, मीडिया एडवाइजर चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड, आप हमारे बीच उपस्थित हैं, भाई साहब का भी मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। और इतने दिव्य रतन महारतन इस मंच पर शोभायमान हो चुके हैं और इस सत्र को हम शुरू करें उसके पहले प्यारे प्रभु का हम आह्वान करते हैं 2 मिनट के लिए परमात्मा की उपस्थिति से इस सत्र का शुभारंभ करेंगे। करते चलो सबका भला, यही है जीवन जीने की कला। और जब हम अपने जीवन में सबकी भलाई करते हैं, भला करते हैं, तो भला का उल्टा लाभ होता है। हमेशा लाभ हम चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें भलाई के लिए दो कदम आगे आना होगा। और प्रभु के आह्वान के साथ इस सत्र की शुरुआत करते हैं। हमारे मंच पर सभी सम्मानित वक्तागण मंगल मूर्ति उपस्थित हैं और मैं हमारी दिव्य बहनों से आग्रह करूंगी कि आप सभी आए और सभी अतिथियों का बैज महकते हुए फूलों के गुलदस्तों से और अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। स्वागत के ये पल बहुत ही हमारे लिए अनमोल हैं। दूर दराज से अमूल्य समय निकालकर, अपनी अनेक सेवाओं को छोड़कर ईश्वरीय दरबार में आप सभी हमारे प्रभु रतन पहुंचे हैं। आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन है, स्वागत है। हृदय संचित भावना से पुष्प की शुभ माल लेकर आज हम प्रस्तुत हुए हैं। स्वागत के शुभ भाव लेकर कहते हैं, जब स्वागत जोशीला हो तो माहौल में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। तो आइए इस पूरे जोश और उत्साह के साथ, जोरदार तालियों के साथ मंचासीन मेहमानों का स्वागत करते हैं। देखिए, ताली बजाने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला फायदा तो आप सब जानते होंगे, जब उमंग, उत्साह और जोश और जुनून और खुशियां जाहिर करनी होती है तो हम तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं। दूसरा, तालियों से एक्सरसाइज भी हो जाती है, एक्यूप्रेशर भी ठीक रहता है। तीसरा, माहौल थोड़ा दिन का है, तो आपको समाज सेवा करनी होगी। अगर आपकी तालियां बजती रहेंगी तो आजू बाजू वाले नींद में ना जाए, इसलिए सेवा आपको करनी होगी। ये ईश्वरीय दरबार सज गया है। कहते हैं, खूबसूरत से पल जिंदगी का एक किस्सा बन जाते हैं। जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कुछ सीखने का और कभी ना बिछड़ने का एक रिश्ता बन जाते हैं। तो ऐसे कुछ विशेष रत्न आज हमारे मंच पर शोभायमान हो चुके हैं और जो आज के विषय पर अपने अनुभव युक्त विचार रखेंगे। और जैसे कि हमारा विषय है मीडिया की नैतिकता, जवाबदेही और स्वमूल्यांकन, आप देखिए, सोचिए, नैतिकता की आवश्यकता ना केवल मीडिया को है बल्कि समाज के हर व्यक्ति की ये जिम्मेवारी है नैतिकता को अपनाना। नैतिकता एवं जवाबदेही की बातें केवल मीडिया तक ही सीमित ना रहें, बल्कि हर व्यक्ति को इसको निभाने की उतनी ही जिम्मेवारी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति का निर्माण होगा तभी परिवार का, एक श्रेष्ठ समाज का और एक सुखमय संसार का निर्माण संभव है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की इकाई है। और यह शुभ कार्य मीडिया के द्वारा हो तो समाज में एक अच्छा संदेश, शुभ संदेश जा सकता है और इस पुनीत कार्य को मीडिया के द्वारा आसानी से किया भी जा सकता है। वर्तमान समय लोगों के दिलों में, दिमाग में, जीवन में, मन में मीडिया का प्रभाव है। तो क्यों ना आज जो भी हम सब यहाँ उपस्थित हैं, छोटे छोटे कार्यों से, छोटे छोटे शुभ संकल्पों से बड़े बड़े कार्य को या बड़े बदलाव को अंजाम देने के लिए आगे आए। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मैं क्या परिवर्तन ला सकता हूँ, इस अवधारणा को तोड़ते हुए हम ही वो ज्योति और वो दीपक बन सकते हैं जो समाज में रोशनी फैलाने के निमित्त बन सकते हैं। तो आइए आज के विषय पर हम वक्तव्य सुनेंगे आदरणीय राजयोगिनी उर्मिला दीदी जी से। आप बहुत ही वरिष्ठ राजयोगिनी प्रशिक्षिका हैं। आपने एमए इंग्लिश में किया, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से किया। आप मेरिट में हमेशा ही रही। आप वरिष्ठ शिक्षिका हैं और विशेष रूप से आप ज्ञानामृत मासिक पत्रिका की संपादिका हैं एवं सह संपादिका त्रैमासिक हरियाली पत्रिका जो आपके निर्देशन में चलती है। आपने अनेक आध्यात्मिक अभियानों के द्वारा भारत के विभिन्न प्रांतों नेपाल में भी अपनी ईश्वरीय सेवाएं दी हुई हैं। आपने अफ्रीका महाद्वीप के केन्या देश और भी अनेक थाईलैंड बर्मा आदि में भी अपनी सेवाएं समय प्रति समय दी हुई हैं। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में विभिन्न विषयों पर आप हमेशा संबोधन देते हैं। बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक विपत्तियों में राहत शिविर लगाने में आपका विशेष अपने जीवन का अनुभव है। संस्थान में कई सारे कोर्स और विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आपका सक्रिय योगदान है। आप बहुत अच्छी आध्यात्मिक लेखिका हैं। आपके लेख परिवर्तनकारी होते हैं और अनेक आत्माओं के जीवन को बदलने के निमित्त बने हैं। अमृत संचय नाम से आपकी 3 पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। तो जोरदार तालियों के साथ हम आदरणीय उर्मिला दीदी जी को सुनेंगे। आइए।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की अति प्रिय संतान, मंच पर विराजमान हमारे भ्रातागण और भगिनी, सभा में विराजमान आप सभी भगवान शिव के प्यारे प्यारे बच्चों, आज का हमारा विषय बहुत ही सामयिक भी है और चिंतनीय भी है। इसमें मुख्य 3 मूल्यों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, नैतिकता, जवाबदेही और आत्म अवलोकन। संसार नैतिकता पे टिका है। नैतिकता मानव जीवन का श्रृंगार है। जीवन में नैतिकता है तो सब कार्य सफल होते हैं, व्यक्ति आगे बढ़ता है, आपसी संबंधों में सुख का संचार होता है। इसलिए मीडिया जो हमारे प्रतिदिन के जीवन से गहरा जुड़ा हुआ है, वो नैतिकता से ओतप्रोत हो तो हम सबका जीवन कितना खुशबूदार बन जाए। क्योंकि हम बहुत बातें मीडिया से प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, अगर वो बातें मूल्यों पे आधारित हों, सद्गुणों पे आधारित हों, तो हम जो भी ग्रहण करेंगे वो कितना आनंदकारी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि मीडिया एक उर्वरा भूमि की तरह से है। जैसे उर्वरा भूमि पौष्टिक पदार्थ देती है जिससे हमारे शरीर का पोषण होता है, तो मीडिया हमें शक्तिशाली विचार देता है जिससे हमारे मन का पोषण होता है। अगर ये विचार सात्विक हैं, सत्य हैं, पूर्वाग्रहों से मुक्त हैं, पक्षपात रहित हैं, शांतिपूर्ण सद्भावपूर्ण हैं, तो ये पोषण करते हैं। और अगर इसके विपरीत हैं तो कुपोषण का कारण भी बनती है। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा कि मीडिया को लोगों की भावनाओं और संवेदनाओं से जुड़ना चाहिए और वो बातें अवश्य प्रस्तुत करनी चाहिए जो लोगों के हित में हो। अगर मीडिया अहिंसक परिस्थितियों को बातों को बढ़ावा नहीं देगा तो हिंसा को मिटाना संभव नहीं होगा। सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में शांति कैसे आए, हमारे भावों का शुद्धिकरण कैसे हो, अंतरात्मा का रूपांतरण कैसे हो, इन महत्वपूर्ण विषयों पे हमें स्थायी स्तंभ अपने अपने कंटेंट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने हैं। हम तो ये कहेंगे कि जैसे हवा फूलों की खुशबू को चारों ओर फैलाती है, ऐसे हम सब मीडिया वाले सद्गुणों की खुशबू को पूरे समाज में फैलाएं, क्योंकि हमारे हाथ में शक्ति है। हमें परमात्मा ने ऐसा एक साधन दिया है, हम ये काम कर सकते हैं। मीडिया केवल विलास के लिए नहीं है, इसे महिलाओं, कमजोरों, मजदूरों, बेरोजगारों, गरीबों की बात करनी होगी। मूल्यों को बढ़ावा देने वाली, चरित्र का उत्थान करने वाली, आदर्श को स्थापित करने वाली भावनाओं का निर्माण करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब काम मीडिया कैसे करेगा, इसका आधार क्या है? तो भाइयों और बहनों, मैं अपने अनुभव के आधार पे बताना चाहती हूँ कि मूल्यों की स्थापना का आधार आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिकता अर्थात अपने को जानने की प्रक्रिया, अपने भीतर उतरने की एक गति, आत्म साक्षात्कार करने की एक विधि। जब हम आध्यात्मिकता का स्पर्श पाते हैं तो हमारे जीवन का सकारात्मक परिवर्तन होता है, और जब हम बदलते हैं तो हमसे जुड़े हुए कितने भी लोगों सब में परिवर्तन अवश्य आता है। पिछले दिनों एक पत्रकार भाई का शांतिवन में आगमन हुआ। उन्होंने बड़ा अच्छा अनुभव सुनाया कि मैं 3 महीने से मेडिटेशन सीख रहा हूँ, आध्यात्मिकता के टच में हूँ। एक घटना घटी, मैं अपने बच्चे को स्कूटर पे बिठा के स्कूल छोड़ने जा रहा था तो रास्ते में एक रिक्शा वाला गलत दिशा से आया, हमारी टक्कर होते होते बची, मैं बच गया। शांति से बच्चे को स्कूल छोड़ के आया, फिर अपने ऑफिस में आया और अपने अखबार में मुझे जो कंटेंट लिखना था मैंने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही अच्छे से लिखा। उसने कहा कि अगर 3 महीने पहले ये घटना घटी होती, जब मैं मेडिटेशन सीख नहीं रहा था, तो पता है क्या होता, मैं लोगों को इकट्ठा करता, रिक्शे वाले को पकड़ता, हो सकता है उसकी पिटाई भी करता, और फिर बच्चे को लेके स्कूल पहुंचता तो वहां प्रिंसिपल को सारी घटना सुनाता, सारे स्कूल को इकट्ठा कर लेता, और उसके बाद मैं ऑफिस नहीं जाता, फिर घर जाता, घर जाकर के घर वालों को भी पूरी बात बताता क्या हुआ, पड़ोसियों को भी बताता, और फिर ऑफिस जाता तो ऑफिस में जाके काम नहीं करता लेकिन ऑफिस में भी यही चर्चा करता, बार बार मन में यही संकल्प करता, ये रिक्शे वाले कैसे है, पता नहीं किधर से आ जाते। लेकिन चूंकि मैं मेडिटेशन सीख रहा था, मैंने अपने मन को डाइवर्ट किया, बड़ी बात को छोटा बनाया, समस्या पे फोकस नहीं किया, समाधान पे फोकस किया, और परिणाम ये निकला कि मेरा 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गया, ना मैंने दूसरों का समय व्यर्थ गंवाया, अपना काम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया। तो ये है आध्यात्मिकता की शक्ति और इसका थोड़ा भी स्पर्श हमें मिल जाए तो हम जीवन में बहुत कुछ नैतिक और मूल्य आधारित कर पाएंगे। उसके बाद हम जवाबदेही की बात करेंगे। हमारे इस विद्यालय के एक चीफ एडिटर ज्ञानामृत वर्ल्ड रिन्यूअल के भ्राता जगदीश चंद्र जी हमें सिखाया करते थे कि आप अपनी टेबल पे बैठ के जो एक अक्षर लिखते हो ना, एक करोड़ों आत्माओं तक पहुंचता है। प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत प्रभावी है, लेकिन ये फैलते फैलते करोड़ों तक पहुंच जाता है। इसलिए आप एक भी शब्द लिखो तो उसका परिणाम क्या होगा, उसका आकलन करो। क्या मेरा ये शब्द समाज में शांति फैलाएगा, प्रेम का प्रचार करेगा, लोगों को आपस में जोड़ेगा, सौहार्द को, सद्भावना को बढ़ाएगा? पहले अपने भीतर में विजुअलाइज करो और उसके बाद लिखो। तो उन्होंने हमें ये बहुत अच्छी बात सिखाई कि ये मत सोचो कि मैं अकेला हूं, अकेले में बैठ के अकेला काम कर रहा हूं। आप बेशक एकांत में बैठे हो, लेकिन अपने कंटेंट के माध्यम से आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो, और वो चीज आज नहीं तो महीनों बाद, सालों बाद भी जीवित रहती है और लोगों तक पहुंचती रहती है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। एक किसान ने अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा किया, मुझसे कुछ ऐसे शब्द बोले जो नहीं बोलने चाहिए थे, और फिर पश्चाताप हुआ तो अपने गुरु के पास गया। गुरु ने उसे कुछ पंख दिए और कहा कि उस चौराहे पे फेंक दो जहां बहुत ट्रैफिक है। उसने वो पंख फेंक दिए, उसके बाद गुरु के पास गया। गुरु ने कहा सारे पंख उठा करके ले आओ। तो किसान ने कहा तो बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं उड़ के कहां कहां गए होंगे। तब गुरु ने समझाया कि आपने मुझसे जो कुछ बोला उसको वापस लेना भी बहुत मुश्किल है, पता नहीं वो कहां कहां किस किस के पास पहुंच गया होगा। तो हम सबकी इतनी जिम्मेवारी है कि हम मनसा वाचा कर्मणा जो भी कर्म करें पहले सोचें और फिर करें, ताकि बाद में हमें ये ना कहना पड़े कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, स्पष्टीकरण ना देना पड़े, हमें ये ना कहना पड़े कि मैं बोलना नहीं चाहता था लेकिन मेरे मुख से निकल गया, मैं लिखना नहीं चाहता था पर पता नहीं कैसे लिखा गया। इस प्रकार के बातों से बचने के लिए हम बहुत सावधानी पूर्ण जवाबदेही के साथ, जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य करें। और जब हम आत्म अवलोकन की बात करते हैं तो इसमें तो पहला शब्द है ही आत्मा। आत्मा को जानेंगे तब तो आत्म अवलोकन करेंगे। तो क्या हम आत्मा को जानते हैं या सिर्फ आत्मा के आवरण को जानते हैं? केवल आवरण को जानते हैं तो आवरण अवलोकन तो हो जाएगा, लेकिन आत्म अवलोकन कैसे होगा? तो आत्मा क्या है, आपने सुबह के सत्र में सुना होगा, इस पांच तत्वों के आवरण के भीतर विराजमान चेतना, आत्मा, सोल, साइकी, वो हम हैं। वास्तव में हम आत्मा हैं। और जैसे हम बाजार में किसी चीज का मूल्य निर्धारित करते हैं तो कोई मानक होता है, तो आत्म अवलोकन के लिए, आत्म मूल्यांकन के लिए हमारे पास मानक क्या है? तो आत्म मूल्यांकन के लिए हमारे पास मानक है आत्मा के मूल गुण, और वो सात। पहला गुण है सत्य ज्ञान, उससे जीवन में पवित्रता आती है। पवित्रता है तो शांति है, शांति है तो प्रेम है, प्रेम है तो खुशी है, और खुशी की चरम सीमा आनंद है। और ये छह हैं, तो सातवां गुण शक्ति भी है। तो जब भी हम कोई काम करें तो इन मूल्यों के मानक को सामने रखें कि क्या मेरा कर्म समाज में शांति का प्रसार करेगा, मेरे भीतर शांति का उत्पादन करेगा, क्या समाज में पवित्रता को बढ़ाएगा, मेरी अपनी पवित्रता को भी इंक्रीज करेगा। एक एक मूल्य के साथ हम अपने कर्म का हिसाब जोड़ करके देखें और अगर अंदर से उत्तर आता है, पॉजिटिव उत्तर आता है कि हाँ शांति बढ़ेगी, प्रेम बढ़ेगा, आनंद बढ़ेगा, तो समझो हमारा मूल्यांकन ठीक है, हमारा कर्म ठीक है। और इस प्रकार का मूल्यांकन करते करते हम जिस मीडिया के साथ जुड़े हैं उसके साथ हम न्याय कर पाएंगे, समाज के साथ भी हम न्याय कर पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार। ओम शांति।
बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया दीदी। जोरदार तालियों से हम दीदी को धन्यवाद देते हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही कि हम आत्म उन्नति करें, आत्म जागृति करें, क्योंकि आत्मा और मन के परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन आ सकता है। मैं एक छोटी सी स्टोरी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक कुमार भाई थे, मिट्टी का बर्तन, घड़ा, ये सब बना के अपना जीवन चलाते थे, कि जीविका का यही साधन था। एक बार उनके पास कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी, मन में आया इसका भी कुछ बना देता हूँ, दो पैसे आ जाएंगे। सोचकर मिट्टी इकट्ठी करके बैठ गए कुछ बनाने के लिए। उनकी श्रीमती जी आई, कहती हैं क्या बना रहे हो? कहा मिट्टी पड़ी थी, सोच रहा हूँ चिलम बना देता हूँ। श्रीमती जी ने कहा देखो गर्मी के दिन है, चिलम नहीं बनाओ, सुराही बनाओ, सुराही ज़्यादा अच्छे से चली जाएंगी, ठीक रहेगा। कुमार भाई ने श्रीमती जी की बात मान ली और ये भी सुखी जीवन जीने का आधार है। और उनकी बात मानकर सुराही बनाने बैठ गए। थोड़ी देर बाद जिस मिट्टी से बना रहे थे उस मिट्टी से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? मिट्टी कुमार से पूछती है क्या बना रहे हो? कुमार ने कहा चिलम बना रहा हूं। मिट्टी ने कहा, कुमार ने कहा सुराही बना रहा हूं। मिट्टी ने कहा अभी तो चिलम बना रहे थे। कहा नहीं, मेरा मन बदल गया है। मिट्टी कहती है मेरा तो अब जीवन बदल गया है। थोड़ा जोरदार ताली बजा सकते हैं। अगर आप मुझे चिलम बनाते, खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। मुझे सुराही बनाया, ये मेरे ऊपर उपकार किया है, खुद भी ठंडी रहूंगी और दूसरों को भी जीवन भर ठंडा रखूंगी, ठंडा ही दूंगी। तो दीदी ने बहुत अच्छी अपनी भावनाएं हम सबके साथ शेयर की और अभी मैं बड़े सम्मान के साथ इस सत्र के गेस्ट ऑफ ऑनर आदरणीय माननीय देवी भ्राता श्री राजेश राजौरी जी आपको आमंत्रित करती हूँ। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया है और पीएचडी शोधार्थी भी हैं। कुछ ही दिनों में आपकी पीएचडी भी अवार्ड होने वाली है, इस बात के लिए आप तालियां बजा सकते हैं। और आप बहुत ही प्रसिद्ध दैनिक देशोन्नति के संपादक हैं, खामगांव प्रेस क्लब के भी आप अध्यक्ष रहे हैं, आवर्ती साठी विकास अधिकारी और प्रबंध के भी आप संपादक रहे हैं। आपको मीडिया जगत में अपनी सेवाओं के लिए कई बार कई सारे अवार्ड से नवाजा गया है, इस बात के लिए भी आप तालियां बजा सकते हैं। और ब्रह्मा कुमारी संस्थान के आप कई वर्षों से बहुत ही लगन से जुड़े हुए हैं, आप सकारात्मक पत्रकारिता और सत्यनिष्ठ पत्रकारिता को बढ़ावा देने में अग्रदूत हैं। भाई साहब, मैं आपके लिए बस दो लाइन कहूंगी, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का तोल नहीं होता, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर लेकिन आप जैसे अनमोल नहीं होते। तो अभी हम बहुत सम्मान से आदरणीय भ्राता श्री राजेश राजौरी जी को सुनेंगे। भ्राता जी,
मीडिया, नैतिकता, जवाबदेही और स्वमूल्यांकन, बहुत ही सुंदर, मैं इसे विषय नहीं कहूंगा, ये एक सिद्धांत है, ऐसा कहूंगा। इस सिद्धांत के ऊपर आज हम यहाँ चर्चा करने के लिए उपस्थित है। इस मंच के चेयरपर्सन प्रोफेसर गोविंद सिंह जी तथा मंच पर विराजमान बीके उर्मिला जी, उर्वशी परमार जी, पीके सुशांत भाई जी, उन्मत सिंह जी, आशुतोष ओझा जी और दीदी सिस्टर बीके शकु दीदी, और मेरे बाजू में बैठे थे शैफाली गुप्ता जी। आप सभी बहुत सुंदर विषय के ऊपर उपस्थिति को थोड़ा दीदी बता रहे थे, लेकिन यहाँ मराठी में उसको गर्दी कहते हैं, तो गर्दी नहीं सब दर्दी है ऐसा मैं समझूंगा। और मराठी वर्तमान पत्र आता है देशोन्नति, उसका संपादक हूँ, तो हो सकता है हिंदी में कोई मराठी शब्द आ जाए, हिंदी उतनी शुद्ध नहीं होगी, तो थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे, इसके लिए शुरू में ही माफी मांगता हूँ। मीडिया नैतिकता, जवाबदेही और स्वमूल्यांकन के ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा विषय यहाँ पर लिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सटीक, निष्पक्ष और जिम्मेदार तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। यह सिद्धांत मीडिया को अपने कार्य का मार्गदर्शन करने हेतु, अपने पाठक अपने दर्शकों का विश्वास बनाए रखने हेतु और अपने काम में सुधार करने हेतु मदद करता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत ही बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं, इनके सामने इन्होंने तो कई पत्रकार कई प्राध्यापक जैसे बनाए हैं, डॉक्टर मानसिंह जी परमार जी बैठे हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी है, प्रोफेसर सोमनाथ वडनेरी जी है, डॉक्टर गोपाल नारसन जी है, और ये सभी लोग मीडिया के मामले में इतना ज्यादा अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। मैं थोड़े मेरे विचार उनके सामने रख रहा हूँ। मीडिया नैतिकता, जवाबदेही और आत्ममूल्यांकन पर जब हम चर्चा करते हैं, स्वमूल्यांकन को मैंने आत्ममूल्यांकन शब्द भी दिया है, आत्ममूल्यांकन पर चर्चा करते हैं, तो इन तीन स्तंभों को हम अलग अलग ढंग से लेकिन जुड़े हुए तरीके से देखेंगे। मीडिया की नैतिकता फर्स्ट नंबर पे हम देखेंगे, तो मीडिया में बहुत बदलाव आया है। मीडिया में हम पहले बोलते थे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साइबर मीडिया और सिटीजनशिप मीडिया, और ये सारे मीडिया के आयाम अब बदल चुके हैं। बावजूद मीडिया आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, जानकारी प्रदान करता है, सभी बातों में शिक्षित करता है और मनोरंजन भी करता है। उत्पादनों का जो चुनाव है, उत्पादन फिर मराठी शब्द आ गया, उत्पादों का जो चुनाव है वो करने में सहायता और प्रोत्साहन भी देता है, इसलिए मीडिया में नैतिकता होना बहुत जरूरी है। मीडिया को नैतिकता से काम करने में दिक्कतें आ रही हैं, हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि इसमें एक नियंत्रण वाली बात होती है, एक अंदरूनी नियंत्रण होता है, एक बाहरी नियंत्रण होता है। तो कानून, मीडिया का कानून है, उद्योग है, वैसे उसका भी नियंत्रण आता है और दबाव भी आता है, पॉलिटिकल वगैरह, उपभोक्ताओं का भी दबाव आता है और विज्ञापनदाताओं का भी दबाव आता है, और आज के दौर में टीआरपी और व्यावसायिक दबावों के कारण कई बार नैतिकता से समझौता होते हुए दिखता है, और यहीं पर गोदी मीडिया की भी चर्चा होती है। खैर वो अलग बात हो जाएगी, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। मीडिया में नैतिकता का मतलब पत्रकारिता में सत्य, निष्पक्षता, ईमानदारी, स्वतंत्रता और सार्वजनिक हितों के संरक्षण से संबंधित है। हम लोग अभी देखेंगे सत्यनिष्ठा, तो सही तथ्यों का हमको प्रसार और प्रचार करना चाहिए। निष्पक्षता देखेंगे तो सभी कोई पूर्वग्रह न रखे। स्वतंत्रता देखेंगे तो राजनीतिक या आर्थिक दबाव में रिपोर्टिंग न हो, और सम्मान की बात करें तो गोपनीयता और गरिमा का हमको ध्यान रखना है। हानि रहितता जो बोलते हैं, तो घृणा और सामाजिक विघटन सामग्री को हम बढ़ावा न दे, इस तरीके से मीडिया का काम होगा। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रह चुके पॉटर स्टीवर्ट ने कहा था कि आपको क्या करने का अधिकार है और क्या करना सही है, इसके बीच के अंतर को जानना ही नैतिकता है। शायद आज हमें इसको बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। हम सेकंड पे आएंगे तो जवाबदेही। जवाबदेही का अर्थ है कि मीडिया को अपने कार्यों के प्रति तथा जनता के और समाज के प्रति उत्तरदायी रहना चाहिए। इसमें बहुत कुछ बातें आती है। वैसे सबसे पहले तो आज सुबह भी शायद परमार जी ने कहा, किसी ने कहा कि मीडिया कोई ऐसा गलती कबूल नहीं करता कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो वास्तव में मीडिया को गलती कबूलना चाहिए और भूल से जो भूल हुई है उसकी सुधारना करना चाहिए। मीडिया को अपने कार्य के अंदर जो कुछ भी चूक के लिए जिम्मेदार ठहरना चाहिए, महत्वपूर्ण है और जवाबदेही यही सुनिश्चित करने में मदद करता है। और आप अपने पाठकों या दर्शकों के साथ विश्वास बनाए रखने में मदद भी करता है। जवाबदेही में गलतियों का स्वीकार करना, खेद व्यक्त करना और सुधार करना शामिल है। और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद हमने भी कुछ सुधार किया है। मैं 2000 दीदी बता रहे थे, रीना दीदी जी, कि दो बहुत सालों से जुड़े हैं, 2007 से यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आ रहा हूँ। और मैंने 2011-12 में एक डिसीजन लिया था कि मेरे बुल्ढाना जिले के देशोन्नति अखबार के संस्करण में हम कोई भी क्राइम की न्यूज फ्रंट पेज पे नहीं डालेंगे। आज 10-11 साल हो गए साहब, और हमें ये जो सुधारना की प्रेरणा मिली है वो ब्रह्मा कुमारी से ही मिली है। सकारात्मक पत्रकारिता की जो हमें एक जुनून सा सवार हुआ है वो सब यहीं से हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसीलिए मिला है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने जैसे सुधार का मैं बोल रहा था कि भाई जवाबदेही में सुधार करना भी आता है, तो इस तरीके से सुधार होता रहता है। और अभी सब लोग बात कर रहे थे, दीदी जी भी बात कर रहे थे कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा, रीना दीदी जी भी बोल रहे थे कि मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा ऐसा मत सोचिए। तो एक शायर ने भी बहुत अच्छा कहा था कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, रीना दीदी, मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता चला गया, और कारवा बनता चला गया। तो ब्रह्मा कुमारी का जो ये कारवा बनता जा रहा है मीडिया का, निश्चित रूप से सकारात्मक पत्रकारिता के लिए और आध्यात्मिक पत्रकारिता के लिए यह काम में आएगा, और पत्रकारिता को जवाबदेही बनना मतलब सिखाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। जवाबदेही में कुछ मुद्दे और आते हैं, स्पष्टता होना चाहिए स्रोतों और तथ्यों की प्रामाणिकता को लेकर, पारदर्शी रहना चाहिए, शिकायत निवारण जिसको बोलते हैं, जनता से आई आलोचना और शिकायतों को गंभीरता से लेना चाहिए और उससे उचित कार्रवाई भी करना चाहिए। स्वतंत्रता तो मतलब जरूरत जो है वो स्वतंत्र प्रेस परिषदा, आंतरिक आचार संहिता, समितियां और सार्वजनिक आलोचना का स्वागत करने वाला माहौल बनाने हेतु मीडिया ने सहयोग करना चाहिए। हम तीसरे पार्ट में आते हैं तो स्वमूल्यांकन, आत्मचिंतन कह दें उसको या स्वमूल्यांकन कर दें, आत्ममूल्यांकन कह दें, का मतलब है कि मीडिया संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा समय समय पर अपने कार्यों की समीक्षा करना और यह देखना कि वे नैतिक मानकों, जवाबदेही की भूमिका तथा सामाजिक अपेक्षाओं पर खरे उतर रहे हैं या नहीं। इससे वे अपनी उपलब्धियां और कमियों को पहचान सकेंगे तथा अपनी विश्वसनीयता और जनता के भरोसे को बनाए रख सकते हैं। अब विश्वास की तो बात यहां आती है तो वापस मुझे एक शेर याद आता है, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग कि विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता, विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। हम उसको यहाँ कह देंगे कि विश्वास के लायक मीडिया नहीं मिलता, क्योंकि बहुत मीडिया देखने के बाद में सत्य न्यूज पता चलती है कि सत्य क्या है। तो हमको विश्वास के लिए मीडिया को काम करना चाहिए। मीडिया को आत्ममूल्यांकन के लिए आत्मचिंतन करना चाहिए, क्या हमारी रिपोर्टिंग से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी रिपोर्टिंग सहायभूत हुई है या सिर्फ हमने सनसनी फैलाई है, यह भी हमें देखना चाहिए। इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, आंतरिक हमारे कंटेंट रिपोर्टिंग प्रक्रिया और हमारे निर्णयों का स्वतंत्र समीक्षा हमें करनी चाहिए। पत्रकारों को नैतिक प्रशिक्षण देना चाहिए जो ब्रह्मा कुमारी दे रही है, पत्रकारों के लिए नियमित नैतिक शिक्षा और वर्कशॉप आयोजित करना चाहिए। और यहां पर तो साल में 2 बार यह सारा आयोजन होता है और सारे नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना के लिए प्रोफेसर कमल दीक्षित जी को भी आज हम याद करते हैं, सुशांत भाई जी इतने सालों से उनके साथ उन्होंने यही कार्य किया है और पिछले 35 साल से ब्रह्मा कुमारी आज ये मीडिया के लिए काम कर रही है। तो आत्मचिंतित आत्ममूल्यांकन या सुधार के लिए एक प्रक्रिया प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने पाठकों तथा दर्शकों की अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं। यह सुधार की गुंजाइश है जिसमें मीडिया की अपनी प्रक्रिया तथा उत्पादों में सुधार करने में मदद होती है और जिससे मीडिया की गुणवत्ता में सुधार आता है। मीडिया लोकतंत्र चौथा स्तंभ है, लेकिन इसकी ताकत तभी सार्थक है जब नैतिकता का पालन करे, जवाबदेही को माने तथा आत्ममूल्यांकन के जरिए लगातार सुधरने का प्रयास करे। आज के डिजिटल युग में, सोशल मीडिया के जमाने में जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है, क्योंकि अब सूचना फैलाने की गति भी बढ़ गई है। इस सिद्धांतों से मीडिया सेवा करे और किसी के दबाव में न आए, तब मीडिया अच्छे ढंग से ये कह पाएगा कि मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेवारी है। मीडिया को यह साफ तौर से कहना पड़ेगा कि मैं आईना हूं, मेरी अपनी जिम्मेवारी है, जिस किसी को पसंद न हो वो सामने से हट जाए। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब। एक बार जोरदार तालियों से हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत सुंदर विचार रखे, किसी के दबाव में ना आए, प्रभाव में ना आए, और मीडिया अपनी नैतिकता और जवाबदेही को समझते हुए अपनी सेवा धर्म को आगे रखकर कार्य करे। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ प्रेम पूर्वक आमंत्रित करने जा रही हूँ, हमारे बीच भोपाल से पधारी हैं देवी बहन डॉक्टर उर्वशी परमार जी। आप सीनियर प्रोफेसर हैं मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल में, वर्तमान में अपनी सेवाएं आप दे रहे हैं। आपको पत्रकारिता एवं जनसंचार के क्षेत्र में 10 से भी ज्यादा वर्षों का अधिक का शिक्षण अनुभव है। आपने पीपुल्स इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज भोपाल में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया हुआ है। आपने ऑल इंडिया रेडियो और इंदौर में अनाउंसर के रूप में अपनी सेवाएं दी हुई हैं। यूजीसी समिति के भी आप विशेष सदस्य हैं जनसंचार के लिए, और आपको विशेष रूप से 21 फरवरी 2021 को स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में मीडिया शिक्षा में अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देने के लिए विशेष योगदान के लिए पत्रकारिता सम्मान से भी नवाजा गया है। तो ऐसी विशेष आदरणीय डॉक्टर उर्वशी परमार जी हमारे बीच उपस्थित हैं, और मैं आपके लिए कहूंगी, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर मन में आशाएं, भरकर मन में आशाएं, दिल में अरमान यही है, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। और इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ आज वे ज्ञान सरोवर में पहुंचे हैं और अपने अमूल्य विचार हम सब के साथ शेयर करेंगे, देवी बहन डॉक्टर उर्वशी परमार जी।
मंच पर बैठे सभी बुद्धिजीवियों को मेरा प्रणाम, इस सभागार में बैठे सभी प्रबुद्ध जनों को नमस्कार। अभयम सत्व शुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश यगश स्वाध्याय स्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांति पैशुनम दया भूतेश लोस्वम मार्दवम हिर चापलम। भगवद गीता अध्याय 16 का यह श्लोक पत्रकारिता की आदर्श आचार संहिता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि नैतिकता, हम मीडिया में नैतिकता की आज बात कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि नैतिकता कोई बाहरी नियम नहीं है, यह हमारे चरित्र का एक हिस्सा है, यह हमारे स्वभाव का एक हिस्सा है। और इस श्लोक में बताए गए सभी गुणों को जो हमारे मीडिया प्रोफेशनल्स हैं या जो पत्रकार हैं, उन्हें अपने जीवन में लाना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। मीडिया में नैतिक मूल्यों की अगर बात करें तो सबसे पहला, सबसे जरूरी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक जो एथिकल वैल्यू हम जिसको बोलते हैं वो है ट्रुथ। हम सत्य की बात करते हैं, हम सच की बात करते हैं, और एक पत्रकार का यह कर्तव्य है कि बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी बायसनेस के, वो सूचनाओं को जन जन तक पहुंचाए। अ जर्नलिस्ट मस्ट स्ट्राइव टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज इट इज, एज इट इज आई एम सेइंग। मैं इसलिए एम्फेसिस दे रही हूं क्योंकि आजकल जब हम न्यूज देखते हैं या न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें एज इट इज नहीं होती, इसलिए अ जर्नलिस्ट मस्ट स्ट्राइव टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन एज इट इज टू द ऑडियंसेस। एंड ट्रुथ इज दैट कोर एथिकल वैल्यू विच विल अपहोल्ड एवरीथिंग इफ अ जर्नलिस्ट कैन बिल्ड द ट्रस्ट, दैट इज वॉट वी कॉल द क्रेडिबिलिटी। जब हम जो बोलते हैं ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम सच से जुड़े रहें, हम सत्य से जुड़े रहें। हम जो न्यूज है उसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि हम उसमें कोई अपना विचार, अपना ओपिनियन हम लोगों पर ना थोपें, हम जो न्यूज है उसका जो कंटेंट है, जो सूचना है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो जैसे फॉर्म में है उसको वैसा ही लोगों तक पहुंचाएं, और ये चीज लोगों पर छोड़ दें कि वो न्यूज के सारे पहलुओं को समझकर, न्यूज की सारी इन्फॉर्मेशन जब उन्हें मिल जाए, किसी कंटेंट, किसी पर्टिकुलर विषय पर उन्हें अगर सारा कंटेंट मिल जाए, तो उसके बाद ये हम लोगों के लिए छोड़ दें कि वो सोचें इस बारे में कि इसमें से क्या सही है और क्या सही नहीं है। इस चीज को हम उनके लिए छोड़ दें, लेकिन आजकल मीडिया ऐसा करता नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू जब हम बात करते हैं जर्नलिज्म में, तो वो है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता हम जिसको बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी भी जब हम आज के दौर में देख रहे हैं कि मीडिया के लिए बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, बहुत सारी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं, आज लोगों के बीच हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। मीडिया के लोगों पर लोगों का, आम जनों का विश्वास जो है वो कम हो रहा है। तो ये हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा काम, मीडिया प्रोफेशनल्स का या पत्रकारों का काम ये है कि हम सूचना को लोगों तक पहुंचा दें, वही बात जो हमने सत्य के साथ कही। तो ऑब्जेक्टिविटी भी जब हम बात कर रहे हैं तो न्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो श्लोक मैंने अभी आपको सुनाया उसमें सिर्फ ये दो चीजें नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे अंतकरण की शुद्धि, निडरता, संयम, पेशेंस जिसको हम बोलते हैं, जो आजकल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जब हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज का दौर है और टीआरपी की होड़ है, तो उसमें जब हम बात करते हैं संयम की, पेशेंस की, तो वो कहीं ना कहीं हमें नहीं नजर आता। तो इस श्लोक के जरिए श्री कृष्ण ने जो कहा कि ये सभी जो है नैतिकता अगर हमें अपने अंदर लानी है तो ये सभी गुण हमारे अंदर होने चाहिए। इसके साथ ही सरलता और शालीनता, ये सभी आज के दौर में मीडिया प्रोफेशनल्स में होना चाहिए। ये सभी गुण, हम ये नहीं कहते कि आप परफेक्ट बन जाए, लेकिन हम परफेक्टनेस की तरफ अपना एक कदम तो आगे बढ़ाएं। ये सब कोई नई बातें नहीं है, ये सारी बातें हमारे भारतीय ज्ञान दर्शन, हमारे वेदों, हमारे पुराणों, हमारे ग्रंथों में उल्लेखित है। अब बात करते हैं एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की, और जब हम एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं तो बात आती है रूल्स की, रेगुलेशंस की, लॉज की, और बिना पीसीआई को मेंशन करे ये पूरा नहीं होता, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में जहां तक कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, तो मैं एक चीज की तरफ आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा, उसके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में कई पत्रकार, मीडिया प्रोफेशनल्स जानते हैं, उन्हें कई बार उन्होंने शायद पढ़ा भी हो। उसमें एक शब्द है, वो जहां से शुरुआत होती है उसकी, वहां एक शब्द है उसमें, द काउंसिल बिल्ड द कोड ऑफ कंडक्ट। ये जो शब्द है बिल्ड, इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो हम एक इमारत के निर्माण की बात करते हैं, तो एक ईंट रखी, उसके ऊपर दूसरी ईंट, फिर तीसरी, और इस तरह से धीरे धीरे एक पूरी इमारत का निर्माण कार्य पूरा होता है। लेकिन प्रेस काउंसिल को गठित हुए इतने साल हो गए और इतने वर्षों बाद भी यह जो शब्द है ज्यों का त्यों है। तो आज तक भारत में हम जिस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं उसमें ये शब्द, आज भी हम कोड ऑफ कंडक्ट को बिल्ड ही कर रहे हैं, तो आज तक इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। ये एक बहुत विचारणीय प्रश्न है कि कोड ऑफ कंडक्ट कब पूरा होगा, इसका निर्माण कार्य कब पूरा होगा, ये आज भी संपूर्ण नहीं है। इसके साथ ही एक और मुद्दा है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, वो ये कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोड ऑफ एथिक्स तो दे दिया, कोड ऑफ कंडक्ट तो दे दिए, लेकिन इनका उल्लंघन करने पर या इनका पालन ना करने पर पीसीआई के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है कि वो इसका उल्लंघन करने वाले लोगों पर कोई कार्यवाही कर सके, उन्हें कोई पनिशमेंट दे सके, उन्हें कोई सजा दे सके। यहां मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूं क्योंकि जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही दूसरे क्षेत्रों में भी काउंसिल्स होती है ना। आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुना होगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया लॉ एजुकेशन का नियमन करती है, व्यवसायिक आचरण, शिष्टाचार और विधि शिक्षा के मानक तय करती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पावर्स की अगर अब बात करें तो
पावर्स नहीं है। हम जो कह सकते हैं कि जैसे हम कहते हैं ना हाथी के दांत सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी सिर्फ आपको दिशा निर्देश दे रहा है, आपको एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट बता रहा है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। तो इसी के साथ एक और चीज इसमें है कि जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसके सनद के बिना एक एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता, और अगर वो इस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में दिए गए एथिकल कोड का कहीं भी उल्लंघन करता है तो वो उसका लाइसेंस खत्म कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि आज भी भारत जैसे देश में जहां मीडिया आज एक बहुत हम चौथा स्तंभ बोलते हैं लोकतंत्र का, तो वहां पर आज भी इसका एक संपूर्णता इसमें अभी भी नहीं आई, तो वो संपूर्णता लाने की आज जरूरत है। आज इसलिए जरूरत है, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक तो ठीक था, लेकिन जब से इंटरनेट डिजिटल मीडिया हम कह लें उसको, हम न्यू मीडिया कह लें, हम सोशल मीडिया कह लें, इसके आने के बाद मुझे लगता है कि इसमें नियमन की आवश्यकता आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है, होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया बेलगाम है। मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया के सारी जो चीजें हैं वो नकारात्मक है, ऐसा नहीं है, उसने कई लोगों की जिंदगियां सवारी हैं। लोग नया स्टार्टअप शुरू करते हैं, सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आप अपने बहुत दूर बैठे किसी व्यक्ति से आपको संवाद करना है, आप सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, आपको मदद चाहिए, किसी प्रकार की सहायता चाहिए, तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो बहुत सारी सकारात्मक बातें हैं उसके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक चीजें होती हैं तो हम क्या हम नकारात्मक जो उसके प्रभाव हैं क्या हम उनको बिल्कुल नजरअंदाज कर दें? ये सोचने का विषय है। इसी के साथ चूंकि मैं एक शिक्षक हूं तो संविधान में हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 से हमें तो मिल गई है, लेकिन जिस तरह मेडिकल काउंसिल और बार काउंसिल का लॉ एजुकेशन और मेडिकल एजुकेशन में जितना दखल है, ऐसा कोई दखल हम मीडिया शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए प्रेस काउंसिल का आज भी नहीं है, या ऐसी और कोई संस्था भी नहीं है जो मीडिया एजुकेशन को और बेहतर बनाने के लिए काम करे। क्योंकि देश में जैसे मेडिकल एजुकेशन है तो पूरे देश में एक व्यवस्था बनी है, एक परीक्षा होती है पूरे देश भर में और बच्चे चुने जाते हैं, लेकिन मीडिया एजुकेशन में बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी ऐसा कोई केंद्रीकरण नहीं है। मीडिया शिक्षा आज भी देश में बहुत बिखरी हुई सी है। ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि हम महाराष्ट्र में जाएंगे, आप वहां का सिलेबस देखें, मैं अभी दीदी ने जो बताया जो यूजीसी कमेटी है उसकी मेंबर रही हूं, तो उस वक्त मुझे मौका मिला कि मैंने देश के जो अलग अलग स्टेट हैं वहां जो मीडिया के कोर्सेज चल रहे हैं उनका अध्ययन करने का मौका मिला उस टाइम। तो हर जगह थोड़ा सा रीजनल जो एजुकेशन है या रीजनल भाषाएं हैं या वहां का इम्पैक्ट ज्यादा नजर आता है और मीडिया कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा पीछे हो जाता है। तो ये पूरे देश भर में ये होना चाहिए। आप एक एक सेमेस्टर में एक विषय या इस रूप में हम उसको पढ़ाएं, लेकिन कहीं ना कहीं एक रूपता पूरे देश भर के जो मीडिया सिलेबसेस हैं उसमें होना चाहिए, जो आज नहीं है, अभी आज तक नहीं है। और इसी चीज के साथ एक और चीज मैं जो कहना चाह रही हूं कि ब्रह्म कुमारी समूह जो शिक्षा में मूल्यों के बारे में जो बात करता है, तो मीडिया शिक्षा में भी इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता है कि आज ये जो दौर है इतना फास्ट दौर है ऐसा कहना चाहिए कि ये जल्दबाजी के चक्कर में हम मूल्यों को, हम नैतिकता को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। मैं चूंकि शिक्षक हूं तो कई विद्यार्थी आते हैं जब वो शुरू में हमारे पास पढ़ते हैं तो हम एजुकेशन फील्ड में हम उन्हें ये बताते हैं कि एथिकल तरह से अगर आप देखेंगे तो क्या सही है, एथिक्स क्या है, तो हम उन्हें जो सिखाते हैं वो हम ये सिखाते हैं कि भाई आपको ये है, ये सही बात है और आपको ये करना है। जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो इसका विपरीत हो जाता है, क्योंकि उनका कहना होता है कि मैम इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं होता जैसा आप बताते। तो ये जो गैप है इसको भरना बहुत जरूरी है। हम एथिक्स की बात सिर्फ एजुकेशन में ना करें, हम उसे प्रोफेशन में लेके आए, ये नहीं है और ये होना चाहिए। बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की, जवाबदेही की। तो संविधान में मीडिया की ही नहीं बल्कि अनुच्छेद 19(2) में जवाबदेही निर्धारित हो चुकी बहुत पहले, जब संविधान बना था तभी। अनुच्छेद 31(2) में कुछ बातें बताई गई हैं जो मैं आपके सामने एक बार, आप लोगों को शायद पता भी हो, एक बार दोहराना चाहूंगी। उसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और डिफेमेशन। ये जो सारी चीजें, ये यही कहती हैं कि मीडिया ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकता जिससे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी हमारे देश की आहत हो। मीडिया ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश नहीं कर सकता जिससे हमारी देश की सुरक्षा को कोई नुकसान पहुंचे। मीडिया ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश ना करे जिससे पब्लिक ऑर्डर, जो सार्वजनिक व्यवस्था है, वो अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाए। मीडिया ऐसा कोई कंटेंट पब्लिश ना करे जिससे किसी की मानहानि हो। अब आप सभी प्रबुद्धजन आज बैठे हैं सामने, मैं बस ये पूछना चाहूंगी कि आज हम, आप सोशल मीडिया पे कोई न्यूज खोल लें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कोई न्यूज चैनल खोल लें, और ये जो सारे मैंने पॉइंट्स कहे, इनमें आप देखेंगे कि ये सभी कुछ, इन सभी से जुड़ी न्यूज आपको मिल जाएगी। हम मानहानि की बात जैसे यहां पर करी है, कई बार यहां पर एक बात करना बहुत जरूरी है, जो मीडिया ट्रायल्स आजकल हो रहे हैं। मीडिया ट्रायल्स में मीडिया एक व्यक्ति को निर्दोष करार दे देता है, वहीं दूसरे चैनल पे उसी व्यक्ति को, उसी मीडिया का एक दूसरा समूह दोषी करार दे देता है। हमारा काम उस पर्टिकुलर केस को, जैसे एक आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करूंगी, सुशांत सिंह मर्डर केस हुआ था, तो उसमें रिया चक्रवर्ती जी को कुछ चैनल्स ने इतना फॉलो किया और बिल्कुल उनको दोषी करार दे दिया अदालत के फैसले से पहले ही, और कुछ चैनल्स ने उन्हें बिल्कुल बेगुनाह साबित कर दिया। तो क्या मीडिया का ये काम है? क्या हमारा काम सिर्फ इतना नहीं था कि उस केस से जुड़े सारे तथ्यों को हम लोगों के सामने रख दें, और उसके बाद हमारे यहाँ न्यायपालिका है? कई बार हम मीडियाकर्मी, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज को भूल जाते हैं कि हम एक दूसरे के कार्य में दखल ना दें। निर्णय देना, ऐसे किसी भी केस में जजमेंट देना, ये मीडिया का काम नहीं है। जजमेंट के लिए न्यायपालिका है भारत में। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हमारा काम जो है, हमारा कर्तव्य जो है, वो सूचना को पहुंचाना है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, जैसे कोविड में बात करें, कोविड में सोशल मीडिया की एक बहुत अच्छी भूमिका रही कि लोगों तक किसी भी तरह की जानकारी, मदद, सहायता पहुंचानी थी तो सोशल मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उसके साथ एक और चीज हुई कि व्हाट्सएप पे एक छोटा सा एक लाइन का मैसेज आता है और कई लोग अपनी जान को हथेली पे रखकर अपने घरों के लिए निकलने के लिए एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। तो वो एक मैसेज कितना खतरनाक था उस समय, इतनी मौतें आसपास हो रही थी, ये कितना खतरनाक था कि इतने लोग उस एक मैसेज के पीछे इकट्ठे हो जाते हैं कि उन्हें अपने घर तक शायद पहुंचने का मौका मिल जाएगा। तो ये सोशल मीडिया, हमें सोचने की जरूरत है कि यहाँ पर सोशल मीडिया जो हम कहते हैं, व्हाट्सएप या जितने भी दूसरे एप्स हैं, उसके थ्रू ये जो जानकारी कितनी जल्दी वायरल हो जाती है। तो ये जहां एक और अच्छी बात है, जहां एक और हमें कई चीजों में इससे मदद मिलती है, वहीं कई जगह इसके दुष्प्रभाव भी हैं। मीडिया में एक आवश्यक चीज ये भी है कि हम मीडिया में बच्चों को सिखाते हैं तीन हमारे जो मास कम्युनिकेशन के तीन फंक्शंस होते हैं, और उसको प्रायोरिटी के तौर पे सिखाते हैं हम कि मास कम्युनिकेशन का जो पहला फंक्शन है वो टू इन्फॉर्म है, दूसरा टू एजुकेट है, और तीसरा टू एंटरटेन है। लेकिन आज के दौर में आप कोई भी न्यूज मीडिया चैनल उठा लीजिए, मुझे ये कहते हुए बिल्कुल कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन मीडिया कोई भी न्यूज मीडिया चैनल आप उठाएंगे तो उस पर एंटरटेनमेंट थोड़ा ज्यादा और न्यूज थोड़ी कम होती है। तो एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं हावी हो रहा है इन सब पे। ये सभी चीजें इसलिए बता रही हूं क्योंकि जो हमारी तीसरी आज के विषय में जो तीसरी बात है, आत्म मूल्यांकन की जो बात है वो करना जरूरी है, तो हमें ये सारी चीजों पर सोचने की आवश्यकता है। हम आत्म अवलोकन करें और आत्म अवलोकन के साथ स्वाध्याय भी करें, जो आजकल शायद हम नहीं करते। तो आत्म अवलोकन करने के लिए भी आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। पहले जितने पत्रकार होते थे वो बहुत स्वाध्याय करते थे, पुराने जमाने में आप अगर जो पत्रकारों को देखेंगे तो बहुत स्वाध्याय करते, आज भी करते हैं, मैं ये नहीं कहती नहीं करते, लेकिन फिर भी इसकी आवश्यकता और ज्यादा है। तो मैं आप सभी से यही एक बात कहना चाहूंगी, बस अपनी वाणी को विराम देते हुए, कि सेल्फ इवैल्यूएशन, नैतिकता और जवाबदेही, अगर हम इसके दायरे में रहेंगे तो मीडिया रूपी शक्ति लोक हितकारी होगी, अन्यथा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर विचार, सुनना तो और भी चाहते हैं लेकिन समय की सीमा है, इसलिए सभी अनुभवी वक्ताओं से रिक्वेस्ट है, गागर में सागर भरते हुए अपने विचार हम सबके साथ शेयर करेंगे। और इस सभा में जो बहुत दूर दूर कोने कोने में बैठे हुए हैं, मैं आप सब से निवेदन करना चाहती हूँ कि थोड़ी दूरियाँ कम करें। इतनी दूर दूर से तो आ गए हैं, थोड़ा और नज़दीक आकर बैठ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ आप सब आगे आकर बैठ जाएं। और अभी मैं आज के सेशन की कीनोट स्पीच के लिए आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार राजयोगी सुशांत भाई जी। आप दिल्ली से हमारे बीच पहुंचे हैं। आप ब्रह्मा कुमारी संस्थान के राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन मीडिया विंग के राष्ट्रीय संयोजक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप पिछले 30 वर्षों से मीडिया क्षेत्र से जुड़कर अपनी अनमोल और अथक सेवाएं दे रहे हैं। आपने सामाजिक बदलाव के क्षेत्र में संस्थान की छवि और प्रसार को बढ़ाने के लिए अपनी अथक सेवाएं दी हुई हैं। आप पिछले कई दशकों से दिल्ली, माउंट आबू और भारत के अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया सम्मेलनों के द्वारा अनेक मीडिया कर्मियों को आपने एक सकारात्मक दिशा प्रदान की है। आप फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, तो आइए अभी हम बहुत सम्मान के साथ आपके अनुभव युक्त विचार सुनना चाहेंगे भ्राता सुशांत भाई जी।
ओम शांति। परमात्मा शिव बाबा के प्रिय संतान, दिव्य आत्माएं, सन्माननीय मंच, मंच में विराजमान प्रबुद्ध भक्तागण, खासकर हमारे आज की जो चीफ गेस्ट है, इस सेशन की जो चीफ गेस्ट है प्रोफेसर डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो कि बहुत ही उनकी स्वभाव जो है, गोविंद सिंह जी की जो स्वभाव है वो बिल्कुल एक आदर्श पत्रकार, एक आदर्श मीडिया एजुकेटर, जिसको सही मायने में मीडिया एथिक्स कहते हैं, उनके जीवन में समावेश है। हमारे बीच में ब्रदर बीके राजेश राजौरे जी हैं, उर्मिला बहन जी हैं, डॉक्टर उर्वशी परमार जी हैं, जो अभी बहुमूल्य वक्तव्य से हमें लाभान्वित किया। उमानाथ जी दिल्ली से आए हैं, हमारे मित्र उमानाथ जी, आशुतोष ओझा जी बिजनेस स्टैंडर्ड के, सकू बहन बॉम्बे से आए हैं, शेफाली गुप्ता जी जो डायरेक्टर एडिटर दखल न्यूज चैनल भोपाल से पधार रहे हैं, और हमारे रीना बहन जी जो बहुत अच्छी ढंग से, कुशल ढंग से मन संचालन कर रहे हैं, और सभा में उपस्थित दिव्य आत्माएं, मीडिया मित्र, प्रबुद्ध व्यक्तित्व हमारे बीच में पधारे हैं, खास करके हमारे विष्णु त्रिपाठी जी हैं, प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी हैं, प्रोफेसर परमार जी हैं, अभी शायद कहीं गए हुए हैं, और भी हमारे बहुत महामनीष मीडिया जगत के विराजमान हैं। आज का जो विषय है मीडिया एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इवैल्यूएशन ये बिल्कुल प्योरली कॉमन सेंस है। मीडिया मतलब कॉमन सेंस, इसमें कोई लंबा चौड़ा एथिक्स अकाउंटेबिलिटी तो है, इसके कोई इतना वो नहीं है। सिर्फ कॉमन सेंस एंड कंसाइंस। मीडिया प्रोफेशन में एक्सलेंस को प्राप्त करने के लिए अगर हम अपनी कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें और कंसाइंस के साथ हमेशा जुड़े रहें, तो सारे वैल्यूज सारे एथिक्स अपने आप अब हमारे पास आ जाएगा। मीडिया एथिक्स की जहां तक बात करते हैं, हमें यहां समझना होगा मीडिया और जर्नलिज्म में फर्क है। मीडिया नॉट नेसेसरली ऑल मीडिया पर्सन्स आर जर्नलिस्ट, बट ऑल जर्नलिस्ट आर मीडिया पर्सन्स। ये एक सूक्ष्म जो है डिफरेंस हमें समझना आवश्यक है कि हम जहां तक मीडिया एथिक्स की बात कर रहे हैं, हम जर्नलिस्टिक एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। और आज जो सोशल मीडिया में जो विसंगतियां हैं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट के हाथ में नहीं है, वो मीडिया जो एक बिजनेस जिसको हम कहते हैं बिजनेस इंटेंशन मेंटालिटी, उसके आधार पर सोशल मीडिया वेस्टेड इंटरेस्ट जिसको कहते हैं सोशल मीडिया चल रहा है। तो इसलिए मीडिया को हमें अलग करना पड़ेगा, जर्नलिज्म से अलग करना पड़ेगा। मीडिया जर्नलिज्म नहीं है। हाँ, मीडिया एक माध्यम है और सारे संसार में जितने भी व्यक्तित्व विराजमान, जितने भी ह्यूमन बींग्स है, सब एक एक माध्यम है। ऐसा संसार में कोई माध्यम नहीं है जिसका कोई पर्पस नहीं है। भगवान की क्रिएशन में कोई ऐसा माध्यम नहीं जिसका पर्पस चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पर्पस तो है। एवरीवन इज सर्विंग वन पर्पस इन दिस डिवाइन क्रिएशन। तो जहां तक मीडिया का है, मीडिया का रोल है, सबसे बड़ा रोल है, अगर मीडिया एथिक्स अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इवैल्यूएशन की हम बात करें एक ही, क्योंकि मुझे कहा गया कि की नोट एड्रेस देने के लिए, की नोट माना कुछ की पॉइंट्स मुझे देना है, मुझे इलाबोरेट करना है, कुछ की पॉइंट्स देना है जो कि हमारे प्रोफेशन या हमारे है, जो हम उसको एक पैशन के रूप में लिए हैं जर्नलिज्म को, उसको हम सही रीति से संपादन कर सकें। तो पेरेंटल रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का तो मल्टीवेरियस रोल है, तो पेरेंटल रोल अगर हम आत्मसात कर ले, हम सोसाइटी के पेरेंटल एटीट्यूड अगर पब्लिक के तरफ रखें कि हम जो परोसते हैं, जो कंटेंट हम कम्युनिकेट करते हैं, कहां तक वो हितकारी है, कहां तक उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो, उसकी कंडीशन ना हो, जिसको हम कहते हैं व्हाट इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, नॉट मियरली व्हाट इंटरेस्ट द पब्लिक। कई बार बेस्ट इंटरेस्ट से हम गाइडेड होके पब्लिक कहते हैं, पब्लिक चाहता है, पब्लिक की रुचि है, इसलिए हम दिखाते हैं, सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। नहीं, इवैल्यूएट करना पड़ेगा, हमें आत्म अवलोकन करना पड़ेगा, आत्मविश्लेषण। मैं जिस प्रोफेशन में हूं, जिस ऑक्यूपेशन में हूं, जिसको मैंने समय शक्ति सब कुछ मैं दे रहा हूं अपनी बहुमूल्य जीवन का, तो मैं कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को क्या कर रहा हूं। चाहे हैं प्रेशर्स हैं, दबाव है, चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं अपनी कंसाइंटी जुड़े रहूं, आत्म अवलोकन करूं, सेल्फ इवैल्यूएशन करूं, तो मैं स्व नियमन के आधार पर, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन, कि हमारा कोई अहित नहीं कर सकता है, ना हमारा जो पैसा है, हमारे जो प्रोफेशन है जिसके लिए हम, जिसको हम आजीविका कहते हैं, वो भी कभी प्रतिहत नहीं होगा। अगर हम कंसाइंस के साथ जुड़े रहे और कर्तव्य करते रहे, हम किसी के मोहताज होने की जरूरत नहीं है, किसी के प्रेशर दबाव में आने की जरूरत नहीं है। हम सबको जो है, सब चैलेंजेस को, चाहे इनर चैलेंजेस हो चाहे आउटर चैलेंजेस हो, हम उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये जो आत्मबल है, जो आत्मशक्ति है, ओके बोल, हम जो अगर इनर कंसाइंस है, इनर वॉयस के आधार पर हम अपने जीवन को, अपने कार्य पद्धति को हम रेगुलेट करें, तो यही है सेल्फ इवैल्यूएशन। और यही है, क्योंकि प्रेस, मैं मीडिया नहीं कहूंगा, प्रेस इज नॉट एन इमानेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज एन इवोल्यूशन ऑफ कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन। तो कन्वेंशन और ट्रेडिशन के तहत जो प्रेस का इवोल्यूशन हुआ है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन के कोई रोल नहीं इसमें। हाँ, एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन दायरे में रहना जरूरी है, लेकिन एज फार एज अकाउंटेबिलिटी इज कंसर्न, मीडिया पर्सन इज या जर्नलिस्ट इज अकाउंटेबल टू हिज ओन कंसाइंस, जिसको हम कहते हैं प्रेस इज द कंसाइंस कीपर ऑफ द नेशन। नेशन की कंसाइंस विवेक को रक्षा करने वाला, अस्मिता को रक्षा करने वाला वो है मीडिया। अकाउंटेबल टू पब्लिक, टू द सिविल सोसाइटी, मीडिया इज अकाउंटेबल टू पब्लिक सिविल सोसाइटी। तो इसलिए अपना नियमन, अपना मीडिया एथिक्स, अपनी कॉमन सेंस के आधार पर, अपनी कंसाइंटियस इनर वॉइस के आधार पर मीडिया को लेना जरूरी है। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छी बात कही थी, देयर इज नो वे टू पीस, पीस इज द वे। शांति, सद्भावना, सुख, उसका कोई मार्ग नहीं, कोई विकल्प नहीं, सद्भावना ही मार्ग है, शांति ही मार्ग है, सुभावना ही मार्ग है। उसके लिए किसी का आधार लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए हमें अंतर मन में आत्मा का जो मूल गुण है, मूल वैल्यूज है, कोर वैल्यूज है, उसमें जब हम स्थित होते हैं और उसको अनुभव करते हैं, इतना आत्मबल, इतना ऊर्जा अंदर से उत्पन्न होता है, तो सम टोटल ऑफ एनर्जी एंड मैटर अवेलेबल इन द यूनिवर्स, उसके सामने कुछ भी नहीं है। आत्मशक्ति इतना बलवान है, तो उसको जागृत करने का उपाय है कि आत्मचिंतन, आत्मा के साथ जुड़े रहें, चिंता नहीं, चिंतन। चिंता जब हम मैटेरियल स्फीयर की बात ज्यादा सोचते हैं तो हम उसमें ग्रसित होते हैं, तो हमारा एनर्जी जो है डिप्लीट होता है, हम चिंतन की प्रक्रिया में काफी नेगेटिविटी के शिकार होते हैं और वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए हम जो है विवश हो जाते हैं। लेकिन जब चिंतन करेंगे, आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन, जो पॉजिटिविटी के सागर है, जो वैल्यूज के गुणों की सागर है, भंडार है, जिनका कभी डिप्लीशन नहीं होता है, सदा शुभ भावना, शुभकामना सबके लिए, तो इसलिए वो है सुप्रीम पेरेंट, सारे संसार के, सारे यूनिवर्स के सुप्रीम पेरेंट परमात्मा है। तो मीडिया एक माध्यम है उस परमात्मा का, सकारात्मक गुण शक्तियों को संचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। तो जैसे ब्रह्मा भी प्रथम मीडियम हुए, तो हम आत्माएं, हम मीडिया आत्माएं, हम जर्नलिस्ट अगर एक अपने को मीडियम माने, परमात्मा को साथ रखे, परमात्मा के साथ अपने अंदर मन की, अंतर मन की तार को जुड़े रखें, तो हमारे में वो गुण, वो शक्ति, वो ऊर्जा उत्पन्न होगा। तो हम एक आत्मसंतुष्टि जिसको कहते हैं, सेल्फ कंटेंटमेंट सबसे बड़ा शक्ति है। अगर सेल्फ कंटेंटमेंट है, वस्तु व्यक्ति वैभव के आधार पर जो कंटेंटमेंट मिलता है वो नश्वर है, क्षणस्थायी है, क्षणभंगुर है, नाशवान है। लेकिन आत्मसंतुष्टि हम कहते हैं, आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर। तो आत्मा के तरफ जब हम अपनी बुद्धि, मन बुद्धि को जब हम एकाग्र करते हैं, चिंतन की प्रक्रिया में रहते हैं, तो हमारे कभी डिप्लीशन नहीं होता है, हम बढ़ता है एनर्जी बढ़ता है, अर्थात हम खुश रहते हैं, हम संतुलित रहते हैं, हम निर्भय रहते हैं, हम क्रिएटिव रहते हैं। इसलिए कहते हैं कंटेंटमेंट इज द की टू क्रिएटिविटी, कंसेंट्रेशन, करेज, कंपासन, सबका जो आधार है वो है कंटेंटमेंट। और कंटेंटमेंट कैसे मिलेगा? जब हम आत्म चेतना, आत्मज्ञान, आत्मबोध और परमात्मा का जो परिचय, परमात्मा की स्मृति में हम रहेंगे, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। तो इनके आधार पर ही हम जो है अपने को सशक्त कर सकते हैं और एक उपराम वृत्ति रख सकते हैं, बेहद की दृष्टि रख सकते हैं, जो कि जर्नलिस्ट की कोर वैल्यू है, बेहद की दृष्टि। कोई ऊंचा नीचा नहीं, सब हमारे लिए, जर्नलिस्ट के लिए सब समान है, बराबर है। अनइक्वल ट्रीटमेंट जर्नलिस्ट सहन नहीं कर सकता, जो ट्रू जर्नलिस्ट है। बेहद की वृत्ति, न्यारा और प्यारा, उपराम माना न्यारा और प्यारा, बुराइयों से न्यारा, जो सच्चाई है और जो अच्छाई है उसके साथ प्यारा, जो कृष्ण को कहते हैं पांडवों के साथ प्यारे थे, पांडव क्या, पांडव प्रतीक है अच्छाई और सच्चाई का। बुराई से न्यारा, मन बुद्धि से सच्चाई के साथ खड़े रहना, अच्छाई के साथ खड़े रहना, इसको कहते हैं उपराम वृत्ति। और ना कोई दुश्मन, ना कोई दोस्त, ना किसी के तरफ कोई फेवर, ना कोई फियर, ना बायस, ना प्रेजुडाइस। ये जो मूल मर्म है, ये जो मीडिया एथिक्स है, ये जो मीडिया वैल्यूज है, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स है, ये हमारे तभी आ सकता है जब हम अंतरात्मा और परमात्मा के साथ जोड़ के कर्म करेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि भगवद गीता जो हमारे शास्त्र है, भगवद गीता मीडिया पर्सन के लिए बहुत बड़ा मीडिया एथिक्स, मीडिया वैल्यूज, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ इवैल्यूएशन, इन सब का जो है निचोड़ है भगवद गीता में पाएंगे। और सबसे बड़ा जर्नलिस्ट पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा में हम देखते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का देश को स्वाधीन करने के लिए दो अस्त्र था, नॉन वायलेंस एंड सत्यता, और उसका आधार क्या था? भगवद गीता। उनके पास शस्त्र क्या था? भगवद गीता। तो ये भगवद गीता हम जो है वो हमारे मीडिया आइकन है। तो मीडिया वाले उस भगवद गीता का जो है बेहद बेहद जिसको कहते हैं वैराग्य और अभ्यास, अच्छाई को सच्चाई को अभ्यास करें, और डिस्पैशन यानी वैराग्य, बेहद की वैराग्य बुराइयों से, जो अहितकारी है, जो मेरे लिए, समाज के लिए, जनता के लिए जो अहितकारी है, मुझे कभी उसको हाईलाइट नहीं करना है। हाँ, नेगेटिव चीजों को हम हाईलाइट करना पड़ता है, जो समाज में घट रहा है, हो रहा है, दिखाना पड़ता है, सुनाना पड़ता है, लेकिन अहमियत नहीं देना है। पॉजिटिविटी को इतना बढ़ा दें तो नेगेटिविटी भी परिवर्तित होकर पॉजिटिविटी के दायरे में आ जाए, और उसको मॉडरेट कर लें, नेगेटिविटी को मॉडरेट करना। नहीं तो क्या होता है, हाइप। हाइप से क्या होता है कि नेगेटिविटी का जो प्रभाव है जनता के मानसिकता के ऊपर हावी हो जाता है। तो जनता की मानसिकता अगर कमजोर हो गया तो देश कमजोर हो जाता है। सिटीजन जिसको कहते हैं, एनलाइटेंड सिटीजनरी को बिल्ड करना मीडिया का एक उत्तरदायित्व है, प्रेस का एक उत्तरदायित्व है। तो इसलिए हम पॉजिटिव बातों को हाईलाइट करें, तभी कर सकते हैं जब उसका हम अनुभव करेंगे। और उसका अनुभव करने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो ये ग्लोबल पीस एंड हार्मनी का जो कॉन्फ्रेंस किए हैं, तो उसका यही मूल उद्देश्य है कि हम कैसे अपने उन मूल्यों को, मीडिया का जो मूल्य है, और मूल्य ही हमारे जर्नलिस्ट जीवन को जो है वैल्यूबल बनाते हैं, सुरक्षित करता है, हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनाता है। तो इसलिए हम आग्रह करेंगे कि इसको अकाउंटेबिलिटी हो या हो कुछ भी हो, हमेशा हम अपने सेल्फ इवैल्यूएट करते रहें, और अपने पेरेंटल रोल को हमें हमेशा याद रखें। मैं समाज का अभिभावक हूं, मेरे कंटेंट को सब कंज्यूम कर रहे हैं, मैं अपने बच्चों को क्या इस तरह का कंटेंट, इस तरह का भोजन परोस सकता हूं? अगर कहीं कई बार हमसे गलती से अनकॉन्शियसली हो जाता है तो उसका अकाउंटेबिलिटी भी हमारे ऊपर लेके उसको सुधारने की जरूरत है, और हमारे जो है कंटेंट को इतना पॉजिटिव बनाएं, जनमानस को हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बनाएं। इन शब्दों के साथ सबका बहुत बहुत आभार। ओम शांति।
दिल से शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियों से भाई साहब को धन्यवाद देते हैं। और आपने अपने वक्तव्य में दो तीन बार महात्मा गांधी जी का जिक्र किया, उनके उसूल, उनके आदर्श, उनकी शिक्षाओं किया, और महात्मा गांधी को तीन चीज सिखाई, मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत, आवाज आ सकती है, बुरा मत सुनो। आज के इस मीडिया परिवेश में हम सब बैठे हैं, मीडिया परिवार बैठा, आज क्या हम ये संकल्प ले सकते हैं, बुरा मत टाइप करो, बुरा मत लाइक करो और बुरा मत शेयर करो। ले सकते हैं संकल्प, जो अभी भाई साहब कह रहे थे कि जितना हो सके हम एक अभिभावक के रोल में आकर ऐसी पालना दें, ऐसी कुछ चीजें सिखाएं जो मानस पटल पर या उनकी मानसिक स्तर को या उनके मनोबल को सिद्ध हो सके। और इन्हीं शुभ भावनाओं को हम सब सुनना चाहेंगे। के बीच बहुत ही नहीं है श्री उमानाथ जी, उमानाथ सिंह जी, आप बहुत ही वरिष्ठ संपादक प्रसार भारती डीडी न्यूज दिल्ली से पहुंचकर हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भी आपने दैनिक जागरण, न्यूज 18, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर और कई विभिन्न प्रसिद्ध मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हुई हैं। ऐसे अनुभवी आदर्श मूर्त आदरणीय भ्राता श्री उमानाथ सिंह जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको हम सब जोरदार तालियों के साथ सुनना चाहेंगे भ्राता जी।
ओम शांति। आज सुबह के सत्र से अच्छा सबसे पहले मंच पर आसीन विद्वज्जनों और सामने बैठे विद्वज्जनों को मेरा प्रणाम। ओम शांति। आज सुबह से एक मीडिया से जुड़ी चिंताएं जताई जाती रही हैं। अभी भी पहले के वक्ताओं ने कई सारी बातें रखी, खासकर के मीडिया इथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इवेल्युएशन को लेकर। जायज भी है, क्योंकि वर्षों मीडिया में काम करने के बाद मुझे भी लगता है कि वाकई कई सारी चिंताएं हैं जिसे उद्घाटित किया जाना चाहिए। आप सुबह में भी सुने होंगे और अक्सर हम सुनते हैं कि जो सबसे सशक्त मीडिया माध्यम है वो जो टेलीविजन चैनल हैं, उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख सबसे ज्यादा कम होती जा रही है। और मैं अपनी बात बताऊं तो आज से तकरीबन 9 साल पहले मैंने अपना टीवी बंद कर दिया और एक सब्जी वाला आया था, उस सब्जी वाले को मैंने दे दिया। तो मीडिया की विश्वसनीयता में जो गिरावट है वो आज की नहीं है, वो लगातार गिरावट आ रही है। और इसीलिए मैंने कहा कि जो सबसे सशक्त, जो सबसे मजबूत मीडियम है, विजुअल मीडियम्स, टेलीविजन चैनल्स, उसमें सबसे ज्यादा गिरावट आई है। सुबह भी हमने सुना कि दो लोगों को बुला लिया जाता है, एक गाड़ी में आते हैं और दोनों को सेट कर दिया जाता है कि एक दूसरे पर आप चिल्लाएंगे और उस चिल्लाहट से चैनलों की टीआरपी बढ़ती है। ऐसे में मीडिया इथिक्स, अकाउंटेबिलिटी और सेल्फ इवेल्युएशन का जो विषय है वो वाकई बड़ा माकूल हो जाता है। और इसीलिए हम बार बार इस पे चिंता भी जताते हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर समाज कहां जा रहा है? मीडिया फाइनली अल्टीमेटली सोसाइटी का ही रिफ्लेक्शन है। अगर सोसाइटी के मानक बदलेंगे तो मीडिया के भी मानक बदलेंगे। बस सामान्य सा मैं एग्जांपल देता हूं कि हमारे साथ जितने लोगों ने इंजीनियरिंग की थी, भले उन्होंने थर्ड रेटेड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की थी, आज वो लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। और अगर दो एक बार अगर अमेरिका, इंग्लैंड और सऊदी अरब जैसे मुल्क जाने का अवसर मिल गया, फिर उनके पास कई घर होते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, और जो मीडिया में काम कर रहे लोग हैं उनकी माली हालत वही की वही रह जाती है। हम इथिक्स की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन मीडिया कर्मियों की जो हालत है उसकी बात शायद ही हम करते हैं। और चूंकि हम सभी यहां पर मीडिया कर्मी ही हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मेरी बातों से इत्तेफाक रखेंगे। इसके अलावा कई सारी चीजें हैं जो कि मीडिया इथिक्स में जो तब्दीली आई है या जो चिंताएं जताई जा रही हैं लगातार, उसके कारण है। जैसे इसमें कोई शक नहीं कि हमने कोर प्रिंसिपल्स से कंप्रोमाइज किया है, उसके कारण साफ है। जैसा मैंने कहा कि आज समाज के मानक बदल रहे हैं, मीडिया कर्मियों को भी पैसे चाहिए, उनकी भी फैमिली होती है, तो निश्चित रूप से कभी कभी कुछ मीडिया कर्मी ऐसे उपायों, मींस का सहारा लेते हैं जो कि औचित्यपूर्ण नहीं है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। कई वक्ताओं ने बताया कि किस तरह से मीडिया कर्मी की जो डिसीजन मेकिंग है वो मोटा मोटी वो सेकेंडरी हो जाती है। प्राइमरी लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मीडिया कर्मी काम कर रहे होते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग फाइनल होती है और उसी से मीडिया कर्मियों को भी कंकर करना पड़ता है, सहमति जतानी पड़ती है। तो अगर उनके इंटरेस्ट कहीं पर ओवरवेल्म कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली जो मीडिया कर्मी उस संस्थान में उस मालिक के साथ काम कर रहे होते हैं, उनके भी मूल्य, उनकी भी नैतिकताएं, उनके भी आदर्श, और जो भी हम आप चर्चा करते हैं, जिन भी शब्दों का हम यूज करते हैं, वो कंप्रोमाइज्ड होगा। हालांकि उसे मैं जायज नहीं ठहराता, है ना। ये बात कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं कहता हूं कि नहीं, मीडिया कर्मियों को भी कंप्रोमाइज करना चाहिए। उसके अलावा सर्टेन बाइसेज हैं, बाइसेज पहले भी थे, ऐसा नहीं है कि आज ही बाइसेज हैं, मीडिया कर्मियों के भी अपने बाइसेज हैं। जैसे पहले हमने देखा इमरजेंसी के टाइम में, हालांकि मेरी उम्र काफी कम रही होगी, 2-4 सालों का मैं रहा हूंगा, लेकिन कई लोग बताते हैं जिन्होंने कि इमरजेंसी को देखा है या पढ़ा है, कि इमरजेंसी के टाइम में मीडिया को बोला गया था कि आप थोड़ा सा झुक जाइए, तो मीडिया ने लेटना शुरू कर दिया, है ना। तो हालांकि उस समय भी हमने देखे कि कुछ संस्थान ने प्रतिमान स्थापित किए, इसी वजह से उनकी विश्वसनीयता आज भी बनी हुई है। तो ऐसे बायसेज आज भी हो सकते हैं कुछ मीडिया संस्थानों के या मीडिया कर्मियों के, जिससे कि हम ऊपर उठ सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी भी देखा, सुशांत भाई ने भी चर्चा की, कि किस तरह से सोशल मीडिया पूरी तरह से ओवरवेलम करता जा रहा है, डोमिनेट कर रहा है, और सच्चाई भी है। मैं आपको बताऊं कि दिल्ली एनसीआर में अधिकांश मीडिया जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं गया हूं पढ़ाने के लिए या एक्सटर्नल के रूप में, और मेरा भी शौक है, और मैं अक्सर पूछता हूं वहां के डीन या प्रोफेसर से कि सर, तो यहां से जो बच्चे निकल रहे हैं वो कहां कहां जाते हैं, मतलब कहां पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अधिकांश मामलों में मुझे सुनने को मिलता है कि बच्चे अब मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पसंद नहीं करते हैं। मुश्किल से अगर 50 बच्चे हैं एक सत्र में, तो 10 बच्चे जाते हैं, 10 बच्चे, 12 बच्चे, है ना। एक तो जॉब की अवेलेबिलिटी कम है, दूसरा पैसे कम मिलते हैं, है ना, और तीसरा जॉब की सर्टेनिटी नहीं है। आजकल तो और भी 6 महीने और साल भर की नौकरी दी जाने लगी है। ऐसे में ऐसे ही जो आजकल के यूथ और यंग हैं, वो बहुत एस्पिरेशनल हैं, हाईली एस्पिरेशनल हैं। वो चाहते हैं कम उम्र में कुछ अच्छा करना, घर होना, गाड़ी होना, आईफोन होना, तमाम चीजें होना। तो अक्सर उनसे सुनने को मिलता है कि बमुश्किल 20-25% बच्चे, मैंने भी देखा, मैं जब भास्कर में था तो हम लोग आईएमसी से 10 बच्चों को लाए और ट्रेनिंग देना हमने शुरू किया, और ट्रेनिंग देते देते 4 बच्चे बचे, और उसके बाद फिर 1 बच्चा बच गया था, और 3 बच्चे फिर चले गए कोई एकेडमिया में, कोई चला गया पीएचडी करने के लिए, कोई चला गया पीआरशिप करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने चले गए बच्चे। तो अगर ऐसा हाल है तो वाकई हमें भी आत्मचिंतन की जरूरत है, है ना। ये सिर्फ मीडिया कर्मियों पर ही हम लगातार इथिक्स का बोझ, अकाउंटेबिलिटी का बोझ डालते रहे, वो ठीक नहीं है। क्योंकि अब तो मुझे, मेरे कई सारे मित्र अब भास्कर और तमाम संस्थानों में एडिटर्स हैं, उनसे मैं पूछता हूं कि आपको यूथ यंग टैलेंटेड मिलते हैं क्या, बताते हैं कि नहीं मिलते हैं। सो अब बच्चे नहीं आ रहे हैं, और जो बच्चे आ रहे हैं वो छटे हुए बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि मीडिया की सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब बच्चे काम नहीं करना चाहते हैं मीडिया में, इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, क्योंकि एस्पिरेशनल हैं बच्चे, महत्वाकांक्षी हैं बच्चे। इसके अलावा अब 80% बच्चे जो हैं, उनमें से बड़ी संख्या में बच्चे डिजिटल मीडियम में जाते हैं, जिसको हम सोशल मीडिया कहते हैं। अभी सुशांत भाई और तमाम लोगों ने कहा कि सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया के अपने खतरे हैं, वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, तमाम तरह की चीजें हैं। उन चीजों के जो रेपरकशंस हैं, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, कल्चरल, वो रेपरकशंस भी सामने आ रहे हैं, और हम उसके विक्टिम भी हो रहे हैं। पॉलिटिकल एंटिटीज, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, सारे लोग उसके विक्टिम हो रहे हैं, और हम पर्सनल लेवल पे भी कभी कभी विक्टिम होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट तो वहीं पर है। जो बच्चे निकल रहे हैं मीडिया हाउसेस से, उनको अगर सोशल मीडिया ऑपरेट करने वाली एजेंसी अगर ज्यादा पैसे देती है तो ऑब्वियसली वो बच्चे उधर जाएंगे, है ना। इसीलिए हम देखते हैं कि ज्यादातर संख्या में जो बच्चे हैं वो किसी नेता के साथ हो जाते हैं या किसी ऐसी एजेंसी के साथ हो जाते हैं जो कि नेताओं या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करती है। ऑब्वियसली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बच्चे बहुत कम रह जाते हैं, या जो कम एम्बिशियस हैं या फिर जो मीडिया को समर्पित हैं, जो कि मीडिया में ही काम करना चाहते हैं, ऐसे ही बच्चे रह जाते हैं। उसके अलावा जो हमने पहले ही बात की, जो एक कमर्शियल इंटरेस्ट भी है सारे मीडिया संस्थानों के, कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मीडिया की इनकम पर डिपेंड नहीं करता है, मीडिया से इतर भी बहुत सारे उसके कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, और जो इंटरेस्ट की सर्व होने चाहिए, ड्रेस होने चाहिए। इसी वजह से अगर संस्थान कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है तो मीडिया कर्मी तैयार होंगे ही होंगे, है ना। और फाइनली हम करते क्या है कि मीडिया कर्मियों की नैतिकता पर हम सवाल उठा देते हैं। तो लेकिन अंत में मैं समय का ख्याल रखते हुए यह कहना चाहूंगा कि ब्रह्म कुमारी जैसी संस्था या फिर कई बहनों ने या भाइयों ने जो चर्चा की कि मीडिया कर्मियों को नैतिकता की एजुकेशन दी जानी चाहिए, आदर्श और मूल्यों के पाठ पढ़ाए जाने चाहिए, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी पहल है। और खास करके ब्रह्म कुमारी जिस तरह की पहल करती आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में देश के विभिन्न हिस्सों से मीडिया कर्मियों को बुलाकर जो नैतिकता विश्वसनीयता की जो सीख दे रही है, ये बहुत प्रशंसनीय है। मैं बहुत सराहना करता हूं। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद भाई साहब। जोरदार तालियों से आपको शुक्रिया करते हैं। थोड़ा तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए, माहौल थोड़ा खुशनुमा और एनर्जेटिक लगे। एक बार थोड़ा आप सब अपने कंधे पर हाथ रखेंगे। अगर सबको यहाँ आकर बहुत खुशी मिली है, खुशियाँ मिल रही हैं, तो थोड़ा दिल से बोलेंगे आई एम हैप्पी। थोड़ी आवाज कम आ रही है भाई। आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, आई एम लकी, आई एम ओके। वाह, थैंक यू। थोड़ा अभी माहौल बहुत सुंदर हो गया है, और ऐसे माहौल में मैं बड़े सम्मान के साथ आदर से बुलाना चाहूंगी आदरणीय भ्राता आशुतोष ओझा जी। आप न्यूज एडिटर हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड में असिस्टेंट एडिटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपके नेतृत्व में बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी डिजिटल की सेवाएं बखूबी चल रही हैं। भारत के सबसे सम्मानित वित्तीय दैनिकों में से एक बिजनेस स्टैंडर्ड में अपनी वर्तमान नेतृत्व की भूमिका आप बखूबी निभा रहे हैं। आप पिछले कई वर्षों से ऐसी पत्रकारिता के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध रहे हैं जो पाठकों को जानकारी प्रदान करे, उन्हें सशक्त बनाए, शिक्षित करे, खासकर वित्तीय और आर्थिक समाचारों के तेजी से बदलते परिदृश्य में आपने अपनी बहुत अथक सेवाएं दी हुई हैं, दे भी रहे हैं। आज ज्ञान सरोवर में आप अपने अनमोल ज्ञान युक्त विचार हम सबके साथ साझा करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ हम सुनेंगे भ्राता आदरणीय आशुतोष ओझा जी को।
सम्मानित मंच, आदरणीय अतिथिगण एवं सामने बैठे मेरे कुल के अनुभवी प्रभावी व्यक्तित्व और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं ब्रह्म कुमारी परिवार का। आपने मुझे आमंत्रित कर एक दिव्य और सकारात्मक ऊर्जा का जो प्रवाह दिया है और उसका साक्षी बनाया है, ये अतुलनीय है। मरुधरा राजस्थान का ये एकमात्र हिल स्टेशन जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, यह परिसर सिर्फ आध्यात्मिक चिंतन का केंद्र नहीं है, यह परिसर एक विचार परंपरा का वैश्विक केंद्र है। और ये निश्चित रूप से यह परिवार न केवल आध्यात्मिकता को समाज निर्माण में संचालित कर रहा है बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर मंथन के लिए एक मंच प्रदान कर वैचारिकी को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। मैं एक आर्थिक पत्रकार हूं और मैं वैसा धारा प्रवाह बातें नहीं कर सकता, कुछ तथ्यों पर अपनी बातें रखूंगा। उससे पहले मैं एक बहुत ही दुर्लभ संयोग आपके साथ साझा करना चाहता हूं और ये दुर्लभ संयोग ये है कि आज मैं अपने शिक्षक अपने गुरु आदरणीय गोविंद सिंह जी के साथ मंच पर बैठा हूं। मैं उनके सामने मंच पर बैठने की मेरी हैसियत तो नहीं है लेकिन ये सौभाग्य ईश्वरी ब्रह्म कुमारी परिवार ने दिया है, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मेरे सामने पत्रकारिता के मेरे सबसे पहले सवाल का उत्तर देने वाले प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी हैं जिन्होंने मई 2001 में मैंने एक सवाल पूछा था, बहुत कठिन सवाल मैंने सल में पूछा था और उसका उन्होंने जो जवाब दिया था उस जवाब को लेकर मैं आज अपनी 20-22 साल की यात्रा को अनवरत चालू रखे हुआ। भूमिका में ज्यादा समय न लेते हुए आज सत्र में जो मुझे विषय दिया गया है मीडिया नैतिकता जवाबदेही और आत्मलंघन, विडंबना यह है कि एक मीडिया कर्मी को इस विषय पर व्याख्यान के लिए बुलाया उसके लिए यह चुनौतीपूर्ण जरूर है क्योंकि वर्किंग स्टाइल हमारी ऐसी है कि हम एग्जीक्यूशन में हैं, हम पॉलिसी फॉर्मेशन में नहीं हैं, तो इसका एक चैलेंज यह होता है कि हम उन चीजों को तय नहीं कर सकते जो कि आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि यह भी एक आज के समय की हकीकत है। साथियों, मीडिया नैतिकता जवाबदेही और आत्ममूल्यांकन हमारे समय का एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में मीडिया सिर्फ खबरों का माध्यम नहीं है बल्कि लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक प्रहरी है। मैं मीडिया के दायित्वों को तीन तरीके से देखता हूं, जैसा कि डॉक्टर उर्मिला परमार ने भी कहा, टू इन्फॉर्म, टू एडुकेट, टू इंटरटेन। अब टू इन्फॉर्म, टू एडुकेट, टू इंटरटेन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो मीडिया कर्मी होता है उसको उस बारीकी को समझना होता है और इसकी एक साधारण शब्द में कहूं तो हर सूचना समाचार नहीं होती है और हर सूचना जब समाचार नहीं है और जो हमें उस सूचना से समाचार को फिल्टर करना होता है, यही जैसे कि हमारे भाई सुशांत जी ने कहा था कि कॉमन सेंस इज ऑल अबाउट द कॉमन सेंस और वही कॉमन सेंस मीडिया कर्मी पर अप्लाई होता है। बहरहाल हम मीडिया एथिक्स की बात करते हैं तो यह केवल सही खबर दिखाने तक सीमित नहीं है कि हम एक सही खबर दिखा दें, इसका अर्थ है सच्चाई को ईमानदारी से पेश करना, खबर दिखाने निष्पक्ष बनाए रखना और समाज के हर वर्ग के प्रति सम्मान बनाए रखना। यह बहुत जरूरी है समाज में सम्मान बनाए रखना। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब टीआरपी ब्रेकिंग न्यूज की होड़ लगी है, डिजिटल मीडिया के संदर्भ में बात करें तो पेज व्यूज, यूनिक विजिटर एक ऐसे मानक बन गए हैं जो हम मानते हैं कि यही हमारी खबर की सफलता का पैमाना है, तो निश्चित रूप से मीडिया की नैतिकता पर गाहे बजाय सवाल उठना लाजमी है और हमें इसको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। हम विरोध और कंटेंट उन बातों का कर रहे हैं जिनमें ईमानदारी न हो। हालांकि इस ब्रेकिंग न्यूज और टीआरपी और नंबर्स की होड़ में भी आज भी मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि अधिकांश मीडिया संस्थान हैं जो आज भी वैल्यूज और एथिक्स पर टिके हुए हैं और सही मायने में इस विशाल लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में दृढ़ता के साथ खड़े हैं। बहरहाल कुछ उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। एक हमारे वरिष्ठ साथी उमाना जी ने आपातकाल का जिक्र किया, ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमें समझने का। आपातकाल से बेहतरीन उदाहरण मीडिया के इथिक्स को वैल्यूएशन करने का दूसरा कोई नहीं है। आप समझिए जिस समय में जिस लिखने पर पाबंदी हो, प्रकाशन पाबंदी हो, उस समय ने भी मीडिया में लिख कर दिखाया और प्रकाशित करके दिखाया, आप उस मीडिया के इथिक्स पर कुछ घटनाओं के हवाला देकर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। मित्रों, आपातकाल के दौरान हमने देखा कि किस तरह प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया, लेकिन कुछ साहसी पत्रकारों ने तब भी सच्चाई दिखाई और तब भी कुछ प्रकाशकों मालिकों ने प्रकाशित की और वो हम सबके सामने है। यह मीडिया की नैतिकता का सर्वोच्च उदाहरण है, वे सरकार और सरकार की असीमित शक्तियों से नहीं डरे, उसके सामने नहीं झुके। वहीं दूसरी ओर मैं एक दो और घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। 26/11 की घटना हुई मुंबई, सबको पता है। कुछ मीडिया संस्थानों ने बिना फिल्टर किए हुए कुछ खबरें दिखाई, कुछ चीजें प्रकाशित की जिसका खामियाजा हमने देखा, जिसकी साइड इफेक्ट क्या हुए वो भी हमने देखे और उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार को शायद पहली बार, जहां तक मैं याद कर रहा हूं, हमारे वरिष्ठ लोग इस बात को कंफर्म करेंगे कि सरकार ने पहली बार मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की कि क्या दिखाएं आप, लाइव प्रसारित क्या करें। जब मीडिया यह दिखाने की, जब मीडिया किसी भी चीज को लाइव दिखाने की होड़ में चला जाता है तो निश्चित रूप से उसके परिणाम घातक होते हैं। हाल में पहलगाम मामले में भी यह हुआ, हालांकि अभी रिपोर्टिंग और उसकी जो एक्यूरेसी संतुलित है, लेकिन एक और जानकारी है कि इस मामले में भी सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मीडिया जिम्मेदार नहीं है। देश के जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, चाहे 2G हो, कोलगेट हो या बाकी जितने भी हो, किसी मीडिया के लोगों ने उन तथ्यों को खोद कर निकाला और सामने जनता के सामने रखा है। ये प्रमाणिकता है और प्रमाणिक दस्तावेजों को सामने रखा है और उसका आपने क्या, उसके नतीजे हैं और उसका क्या रिजल्ट आया आपने भी देखा। कई लोगों पर मुकदमे चले, कई लोग जेल जाना पड़ा। हाँ, यह बात तथ्यपरक है कि तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिनकी गैर जिम्मेदाराना कवरेज ने सवाल खड़े किए हैं, इसलिए निश्चित रूप से मीडिया को आत्ममूल्यांकन करना चाहिए। हालांकि इसके बावजूद ये जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि आज भी मीडिया का एक बड़ा तबका पूरी जिम्मेदारी के साथ आम आदमी की आवाज है। जहां तक बात जवाबदेही की आती है, ये एक बहुत ऐसा विषय है अकाउंटेबिलिटी, जिसमें मैंने पहले ही बोला कि सिर्फ एक मीडियाकर्मी, और हमारे पहले के साथी ने भी ये बात बोली कि सिर्फ एक मीडियाकर्मी उसके लिए अपने जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है, क्योंकि फाइनल आउटपुट में कई चीजें डिसाइड करती हैं। उसमें पॉलिसी होती है, एडिटोरियल पॉलिसी होती है, क्या अलाइनमेंट है हमारा वो होता है। लेकिन निश्चित तौर पर मीडियाकर्मी को अपने पेशे को लेकर इतना प्रोफेशनल है, आज भी है, और उसका यह संकेतक हम देख रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मीडिया की अभिव्यक्ति को आजादी के अंतर्गत स्वतंत्रता जो मिली है, जो संविधान के अंतर्गत जो स्वतंत्रता मिली है, उसके साथ एक बड़ी भी जिम्मेदारी भी जुड़ी है। वैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, न्यूज ब्रोकर्स फेडरेशन जैसी संस्थाएं इसकी निगरानी कर रही हैं, लेकिन जवाबदेही का सबसे बड़ा आधार खुद मीडिया का आत्ममूल्यांकन ही है। आत्ममूल्यांकन का मतलब क्या है, यह भी एक सवाल है। क्या हमारी खबर सटीक है या थी? क्या हमने समाज में सद्भाव बढ़ाने का काम किया या दरार पैदा किया? क्या हमने अपने स्रोतों की गहन पड़ताल की, गहन जांच की? क्या हमारी खबर आखिरी पायदान तक खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाने के साथ खड़ी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मीडिया यानी हम सभी को सभी ढूंढ ले तो वह न केवल विश्वसनीयता बढ़ा सकता है बल्कि लोकतंत्र को भी मजबूत बना सकता है। आज जब हम डिजिटल मीडिया के दौर में बात हैं और बार बार ये बातें हो रही हैं, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, तो एक चीज हमें और समझना होगा, अब सूचना किसी संस्था के द्वारा ही प्रसारित हो यह जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया का युग है, हर व्यक्ति खुद एक प्रकाशक बन चुका है। ऐसे में मीडिया की नैतिकता और जिम्मेदारी और भी जरूरी हो गई है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता बिना जिम्मेदारी के अराजकता में बदल जाती है। आखिर में यह कहना चाहूंगा, मीडिया को स्वतंत्र होने के साथ साथ जिम्मेदार भी होना होगा। मीडिया का स्वरूप ऐसा हो जो सिर्फ सुर्खियां बनाने के साथ साथ आत्ममंथन भी कर सके। अगर मीडिया निष्पक्षता, संवेदनशीलता, ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तभी वह सच्चे अर्थों में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बनेगा। एक बार फिर ब्रह्म कुमारी परिवार का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और अब मैं हम सबको आवाज की दुनिया से दूर शांति की दुनिया में शांति की शक्ति से संपन्न होने के लिए बड़े ही विनम्रता के साथ आग्रह करूंगी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी शकु दीदी जी। आप अपने बाल्य अवस्था से ही पिछले 58 ईयर्स से अपनी जीवन ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करके अनेक मानव आत्माओं का आप कल्याण कर रही हैं। आप वर्तमान में घाटकोपर सब जोन की निदेशिका हैं और पिछले 50 वर्षों से ऊपर मुंबई में अपनी सेवाएं दे रही हैं। YouTube पर तत्वबोध नामक प्रेरणादायी कहानियों के वीडियोस आपके अभी तक 650 पब्लिश हो चुके हैं। आपने अपने कार्यकाल में अनेक सम्मान पुरस्कार की आप धनी हैं, जैसे वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जो आपको कल्याण जिला कांग्रेस द्वारा सम्मानित किया गया, एवं राजयोग ट्रेनिंग कोर्सेज और अन्य मूल आधारित कोर्सेज कराने में आप धनी हैं और भारत तथा विदेश में कई स्थानों पर लगातार निरंतर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो आइए हम आदरणीय राजयोगिनी शकु दीदी जी के साथ कुछ पलों के लिए मेडिटेशन का अनुभव करेंगे। मैं सम्मान के साथ दीदी से आग्रह करूंगी कि हमारे सभी मीडिया मनुष्यों को आप शांति की अनुभूति कराएं, परमात्मा के साथ मन की तार जोड़ें। दीदी जी,
ओम शांति। आज की सुनहरी संध्या और इस प्लेनरी सेशन में मीडिया नीति के अंतर्गत हम उत्तरदायित्व आत्म मूल्यांकन के विषय में हमारे बहुत अच्छे अनुभवी वक्ताओं के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे विचार सुन रहे हैं। जवाबदारी उत्तरदायित्व का अर्थ ही ये है, निभाना, जो संसार में हर व्यक्ति को छोटी बड़ी निभानी पड़ती है, परंतु उस जिम्मेवारी को हम कितना नैतिकता समझकर, नैतिक जिम्मेवारी समझकर के निभाते हैं, वह एक खूबी की बात है, क्योंकि उसके लिए फिर आत्म मूल्यांकन की जरूरत रहती है। हमें देखना होता है समय प्रति समय कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, जा रही हूँ, मेरा मन वचन कर्म समान हो रहा है, क्योंकि जवाबदारी कोई बोझ नहीं है, जवाबदारी आत्म विकास की दिशा में पहला कदम है। जवाबदारी हमें बहुत कुछ सिखाती है, शिक्षा देती है, आगे बढ़ाती है, हमें किस पद तक पहुंचा देती है, और हम पारिवारिक रीति से, सामाजिक रीति से, राष्ट्र के रीति से, विश्व में कोई ना कोई प्रकार से उसमें योगदान दे सकते हैं। तो वो आत्म मूल्यांकन जो है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर मूल्य, आत्मा की जो वैल्यूज है, ईमानदारी, सत्यता, निष्पक्षता, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, वो मेरे में कहाँ तक है। तो आज आप संसार में देखते हैं कि उसका अधिकतर तो अभाव है, तो उसकी भरपाई कैसे करें? तो उसका आधार है राजयोग, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्रत्येक शाखा में सिखाया जाता, परमपिता परमात्मा ने जो हमें सिखाया है, मार्गदर्शन दिया है। राजयोग का अर्थ ही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्मा रूरिहान करती है अपने परमपिता परमात्मा के साथ। तो अभी हम 3 मिनट के लिए अभ्यास करेंगे और अनुभव करने का प्रयास करेंगे। परमपिता परमात्मा जो गुणों के सागर हैं, भंडार हैं, उनसे हम कैसे सब गुण और शक्तियां वरदान के रूप में प्राप्त करें, और ऐसी शक्तियों के आधार पर हम अपनी उत्तरदायित्व को बखूबी निभाकर विजयी बन करके आगे बढ़ते चलें। हम सब रिलैक्स होके, सीधे होके बैठेंगे, हाथ में कोई वस्तु न हो, श्वास छोड़े, श्वास लें। हम अपने अंदर भीतर की ओर जांचेंगे, देखेंगे इस 5 तत्वों के शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति, चैतन्य सत्ता विराजमान है, जिनको ही हम आत्मा कहते हैं। आत्मा एक शक्ति, एक लाइट, एक पॉइंट, प्रकाश है। आत्मा उस परम पिता परमात्मा की संतान है, जो परम पिता परमात्मा सुख, शांति, आनंद, प्रेम, शक्ति, पवित्रता के सागर हैं, भंडार हैं। मैं आत्मा, उनकी ही संतान, सुख, शांति, आनंद प्रेम की स्वरूप हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे ऊपर सभी गुणों और शक्तियों को फाउंटेन की तरह बरसा रहे हैं। मैं उनकी छत्र छाया में स्वयं को बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। परमपिता परमात्मा से शक्ति लेकर वर्तमान समय परमपिता परमात्मा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभाल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इस कलह युग को परिवर्तित कर एक सतयुगी दुनिया, सतयुग जिसको कहते हैं स्वर्ग, गोल्डन स्पैरो, ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसमें आत्मा सदैव के लिए गुणों से भरपूर होती है, सर्वगुण स्वरूप बन जाती है। और ऐसी दुनिया जहाँ कोई भी प्रकार का दुख, अशांति, कलह, कलेश नहीं होता। तो मैं आत्मा परमपिता परमात्मा के इस कार्य में अहम भूमिका निभाऊंगी, निभाऊंगा। ये हम यहाँ से संकल्प लें और अपने अंदर ऐसे दिव्य गुणों को, शक्तियों को परमपिता परमात्मा से प्राप्त करें कि हम अपनी नैतिक जवाबदारियां आत्म मूल्यांकन के साथ साथ निभा सकें, विजयी बना सकें, परिवार को, समाज को, राष्ट्र को, विश्व को। हमारा भारत कल स्वर्ग था और फिर से परमपिता परमात्मा उन्हें ऐसा ही बनाने आए हैं। बखूबी वे जवाबदारी निभा रहे हैं हम बच्चों को साथ में लेकर। ऐसा भारत कल फिर बनेगा जो भारत हर प्रकार से भरपूर होगा।
भारत फिर भरपूर बनेगा, फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी।
ओम शांति। ऐसा ही अभ्यास अगर हम दिन भर में एक दो घंटे के बाद, दो मिनट के लिए भी करते रहेंगे तो आपको बहुत बहुत प्राप्ति हो सकती है। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दीदी जी। और अभी मैं बड़े ही स्नेह से, सम्मान के साथ बुलाना चाहती हूँ आदरणीय देवी बहन शेफाली गुप्ता जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से चलकर हमारे बीच पहुंची हैं। जोरदार तालियों से हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में अपनी डिग्री हासिल की। आपने स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों से लेकर जनसत्ता तक की यात्रा सफलतापूर्वक तय की और उसके बाद 2006 में नेशनल लोकायत पत्रकारिता की ब्यूरो प्रमुख आप रहीं। आपने नेशनल चैनलों में काम करने के बाद मध्य भारत .net की स्थापना की और वर्तमान में आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तेजी से उभरते हुए चैनल दखल न्यूज की डायरेक्टर भी हैं और संपादक भी हैं। शेफाली गुप्ता जी, आप मध्य प्रदेश वुमेन प्रेस क्लब का सम्मान प्राप्त हैं, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी का अंचला अवार्ड, शक्ति उत्सव का प्रेरणा सम्मान और श्रेष्ठ पत्रकारिता सम्मान। इसके अलावा लगातार 3 वर्षों तक आपको दर्शना अवार्ड भी प्राप्त है। ऐसी अनुभवों की धनी, विशेषताओं की धनी चुनिंदा महिला पत्रकारों में से आप हैं जो प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, डिजिटल और सोशल मीडिया के सभी क्षेत्रों पर एक साथ प्रभावशाली भूमिका निभा रही हैं। तो आइए अभी हम सुनेंगे आदरणीय हमारी देवी बहन शेफाली गुप्ता जी को। मैं आपके लिए कहूंगी, हाँ, जब तक जोरदार तालियां, ना थके कभी पैर, ना कभी आपने हिम्मत हारी, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर है जारी, सफर है जारी।
सर्वप्रथम तो मंचासीन सभी अतिथिगणों का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। मेरे श्रोतागण जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं उन सभी को हृदय से प्रणाम करती हूँ। और सर्वप्रथम तो मैं वीके रीना दीदी को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस मंच तक मुझे बुलाया। और यहीं कहीं श्रोता गढ़ों में बैठे हुए हैं वीके राहुल जी, जिन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि आपको आना ही है। और मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ रीना दीदी आपका और राहुल भाई आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं मीडिया की जवाबदेही, नैतिकता और स्वमूल्यांकन का। ये सब आज के युग में थोड़ा सा मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि आज की डेट में एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, ब्रेकिंग न्यूज। जहां पर ब्रेकिंग न्यूज होती है ना, वहां पर एकदम से खबर को लेकर बहुत मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। और जब कोई खबर आती है, अखबार का जो समय होता है वो 24 घंटे का समय होता है, उसके पास वक्त होता है कि जैसा आशुतोष भाई बोल रहे थे कि सूचना से खबर तक परिवर्तन करने में वक्त जो मिलना चाहिए हमको, तो खबर अखबार के पास होता है। और अधिकतर होता है कि कभी कोई खबर होती है, हम भी पूरा दिन निकाल देते हैं, सोचते हैं कि कल अखबार में पढ़ेंगे, डिटेल से आएगा कि इसमें क्या था। तो वहां पर जवाबदेही और नैतिकता और मूल्यांकन की बात ठीक है, लेकिन जहां न्यूज चैनल की बात होती है वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही कोई खबर आती है तो फिर ये आप कभी न्यूज रूम में, पता नहीं सारे लोग गए हैं कि नहीं, लेकिन हाँ मीडिया के लोग तो गए होंगे, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मछली बाजार से कम नहीं है। एक खबर को लेके इतनी चीची पोपो होती है कि भाई ये किसी और चैनल पे ना चल जाए, सबसे पहले हमें दिखानी है। अब उसके पीछे हमको एनालाइज कितना करना है, कितना उस खबर के तथ्यात्मक चीजें हैं उनको ढूंढना है, वो बाद में देख लेंगे, लेकिन हम कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए ब्रेकिंग जरूरी है। एक शेर है, ना खींचो कमान ना तलवार निकालो, तोप हो मुकम्मल तो अखबार निकालो। लेकिन अब इतना आसान नहीं अखबार निकालना। यहाँ पर बात हम पत्रकारों की होती है कि हम पत्रकारों को अपने आप में एनालाइज करना चाहिए, लेकिन जब से ये 6 इंची का मोबाइल सबके हाथ में और सब पत्रकार हैं, क्योंकि क्या एक पत्रकार को क्या चाहिए आज के युग में, कैमरा, और वो कैमरा सबके हाथ में है। फटाक से खबर आती है, सड़क पे कुछ हो जाए या कहीं कोई घटना हो जाए, हम पत्रकार हर वक्त नहीं पहुंच पाते वहां पर। जो खड़ा होता है, जिसके मोबाइल में वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ होता है, वो पत्रकारिता कर देता है। और वो वीडियो सब जगह इतनी जोर से वायरल होता है कि हर किसी के पास कुछ सेकंड्स में दिखाई देने लगता है। जब हम इस मीडिया पर आ चुके हैं तो फिर जब हम इस मीडिया में आने के बाद अगर जवाबदेही की बात करें या मूल्यांकन की बात करें या नैतिकता की बात करें तो थोड़ी सी बेईमानी हो जाती है। जरूरी है ये चीजें, मैं मानती हूं इसको। और ये चीज पहले नहीं थी, पहले नारद मुनि से पत्रकारिता हमारी शुरू हुई, सभी जानते हैं। वो सभी लोगों में भ्रमण करते थे, उनका बड़ा सम्मान होता था। संजय भाई साहब से मेरी सुबह इस विषय पे बात हो रही थी, उनका बड़ा सम्मान था सभी लोगों में उनका, कि भाई वो जहां भी जाएंगे जो भी करेंगे वो नैतिकता के साथ ही करेंगे सारी खबरें। उन पे राक्षस भी भरोसा करते थे तो उन पे देवता भी भरोसा करते थे। हाँ, हमने भरोसा खोया है ये मैं मान रही हूं। ये भरोसा हमने इसलिए खोया है क्योंकि हम बहुत जल्दबाजी में हैं। ये जल्दबाजी सिर्फ मीडिया की नहीं है, ये जल्दबाजी आप लोगों की भी है, क्योंकि आपको भी लगता है कि अरे ये पीछे कैसे रह गए, अरे यार ये खबर दिखाई नहीं पाए, ये तो बहुत पीछे है, ये मीडिया किसी काम का नहीं है, ये अखबार किसी काम का नहीं है, या ये चैनल किसी काम का नहीं है, ये बातें सामने आने लगती हैं। जब हम अखबार, मैंने अखबार में भी काम किया है, मैं वेब मीडिया में भी काम किया है, मैं डिजिटल मीडिया में भी काम कर रही हूं, तीनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ उर्वशी जी बैठी हैं, संजय भाई साहब बैठे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से आते हैं ये लोग और ये वहां पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब एक वकील बनने के लिए लॉ पढ़ना जरूरी है, जब एक इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियरिंग पढ़ना जरूरी है, डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी जरूरी है, तो पत्रकार बनने के लिए पत्रकारिता जरूरी क्यों नहीं है? हर कोई कैसे पत्रकार बन जाता है? हर दूसरे घर में पत्रकार है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो पत्रकार है। जब हम विश्वविद्यालय से, सालों से विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जब इतने बच्चे पढ़कर आ रहे हैं, अगर वो पत्रकारिता करेंगे तो जाहिर सी बात है जब कोई पढ़ लिख कर करेगा तो वो जवाबदेही भी समझेगा, वो नैतिकता भी समझेगा और वो मूल्यांकन भी करेगा। पहले होता था अखबार में कोई खबर गलत छप गई तो अगले दिन उसमें छप के आ जाता था, माफीनामा लिख के आ जाता या संशोधन हो जाता था उस खबर का। लेकिन आज की डेट में कोई भी पत्रकार मानने को ये तैयार नहीं होता कि उसने गलत दिखाया है। वो इसलिए भी नहीं मानते क्योंकि वो उस खबर को सही करने के लिए रोज कुछ ना कुछ ऐसा लेके आते हैं कि जो उन्होंने पहले दिन पहली बार दिखाया था वही सही है। तो नैतिकता और मूल्यांकन और जवाबदेही वहां पर ध्वस्त हो जाती है। हम जब उर्वशी जी क्लासेस लेती होंगी, प्रोफेसर हैं, पढ़ाती होंगी, नैतिकता की बात भी पढ़ाती होंगी और बच्चे आपसे जाके कह देते हैं कि मीडिया संस्थान में गया वहां नैतिकता जैसा हमको कुछ मिला ही नहीं, ऐसा नहीं है उर्वशी जी, थोड़ा आप पढ़ाइए थोड़ा हम सिखाएंगे। और नैतिकता और जवाबदेही दोनों के लिए जिम्मेदार आप भी हैं और हम भी हैं। बच्चे आपके यहाँ कच्ची मिट्टी होते हैं, आप कुम्हार का काम करते हैं, आप कच्ची मिट्टी को एक आकार देकर हमारे पास भेजते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। लेकिन हम ये भी मानने से कहीं नहीं चुकेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपसे भी मेरी बात हो रही थी कि जैसे ही विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं वो अपने आप को बड़ा पत्रकार समझने लगते हैं, वहां पर वो भूल जाते हैं कि इस बड़े पत्रकार को बनने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आज मंच पर कई सारे पत्रकार बैठे हैं जिन्होंने सबने बहुत नैतिकता के विषय पे और बहुत किताबी बातें भी कहीं, कुछ एथिक्स की बातें भी कहीं। मैं यहाँ पे बिल्कुल किताबी बातें नहीं कहूंगी क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। किताबों में ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को उसकी जवाबदेही समझा पाएं या उसको नैतिकता समझा पाएं या उससे ये कह पाएं कि अब अपना स्वयं मूल्यांकन करो, कोई नहीं करता, समय ही नहीं है, कैसे करेंगे। इसके लिए मैं आभारी हूं ब्रह्म कुमारी संस्थान की कि जो हम सबको एकत्र करके हमको स्वमूल्यांकन के लिए समय देता है। हम वाकई में आज मैं यहाँ 3 मिनट का जो ध्यान लगा के बैठी, मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैं पिछली बार कब बैठी होंगी, इतना ध्यान मैंने कब किया होगा, मैंने कब अपनी आत्मा को टटोला होगा। उसके लिए मैं आप सबकी हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप हर बार मीडिया को बुलाते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम करते हैं और हम मीडिया वालों को खुद पे सोचने के लिए मजबूर करते हैं। उसके लिए रीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। एक छोटी सी चीज और है कि जब हम मीडिया संस्थान चलाते हैं, मैं खुद भी चला रही हूँ, मैं पहले नौकरियां करती थी, तो जब हम बहुत भीड़ में फील्ड में घूमते हैं, हम खबर ढूंढ के लाते हैं, करते हैं और हमको लगता है ये बड़ी खबर है और आज इस खबर से बहुत कुछ बदलने वाला है, लेकिन जब संपादक की टेबल तक आता है तो काफी कैची उस पर चल जाती है और जब वो पब्लिश होने वाली होती है तब हम ही पढ़कर चौंक जाते हैं कि अरे हमने तो ये सब कुछ दिया ही नहीं था, ये तो कुछ और ही छप गया है। तो यहां पर सिर्फ एक पत्रकार जवाबदेह नहीं होता, यहां संस्थानें भी होती हैं, लेकिन संस्थानों की मजबूरी को भी मैं समझती हूं। उनको संस्था चलानी है, उनको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी बांटनी है, उनको खर्चे निकालने हैं, तो जाहिर सी बात है कि जैसा हमारे भाई श्री सुशांत जी ने कहा था कि बिजनेस की तरफ मीडिया जब से बढ़ गई है तब से ये चीजें थोड़ी कम हो गई हैं, तो मजबूरी है, बिजनेस नहीं आएगा तो तनख्वाह कहां से देंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूं कि मैं तटस्थ हूं और मैं ये कहती हूं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा, तो ये संभव नहीं है किसी पत्रकार के लिए, किसी मीडिया संस्थान के लिए या किसी कॉलेज के लिए। सभी कॉलेजेस, सभी मीडिया संस्थान अपनी एक लाइन पर चलती हैं और जब न्यूज चैनल में अभी बात चल रही थी, बड़ी बड़ी खबरें आती हैं, सुशांत जी का उदाहरण दिया गया, ये जरूर मैं मानती हूँ ये हमारी जवाबदेही है, हम फटाक से मीडिया ट्रायल लेके बैठ जाते हैं, हम ही कोर्ट लगा लेते हैं और हम ही जज बन जाते हैं और हम ही फैसला सुनाते हैं और इस कदर फैसला सुना देते हैं कि एक व्यक्ति अपने घर से नहीं निकल पाता, वो सबकी नजरों में गिरा देते हैं हम उसको। ये हमारी गलती है, ये हमारी जवाबदेही है कि हमारी वजह से किसी को भी कोई ऐसी परेशानी ना हो कि वो समाज में सर उठा के ना जी सके। लेकिन मीडिया ये काम करती है, मीडिया डिबेट के नाम पर ट्रायल लेकर बैठती है, डिबेट नहीं करती, डिस्कशन नहीं करती, वो किसी एक को आरोपी बना देती है और उसको इस कदर आरोपी बना देती है कि वो समाज में सर ना उठा पाए। बेल बज गई है, 7 मिनट पूरे हो गए हैं और मुझे लगता है मैंने भी जो मेरी मैंने बहुत टुकड़े टुकड़ों में आप लोगों के समक्ष बातें रखी क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल्स में बहुत सारे लोग बोल चुके थे तो इतना डिटेल में बोलने की यहां मुझे आवश्यकता नजर नहीं आ रही थी। आप सबने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगी और रीना जी आपने बुलाया उसके लिए धन्यवाद।
कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली बहन जी। कहते हैं एक चिंगारी काफी होती है आग सुलगाने के लिए और एक हमारी शेफाली बहन काफी है बहुत कुछ परिवर्तन लाने के लिए। तो जोरदार तालियां आपके लिए, धन्यवाद। और अभी मैं आज के इस सेशन के चेयरपर्सन भ्राता श्री प्रोफेसर गोविंद सिंह जी, आप बड़े ही सरलता से सबको सुन रहे थे, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी। आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के मीडिया एडवाइजर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आप सेवानिवृत्त हैं, प्रोफेसर और डीन के सम्मानजनक गरिमामय पद पर आप अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आपने कई वर्षों तक रेडियो टीवी पत्रकारिता, विकास पत्रकारिता और लघु पाठ्यक्रम विभागों के पाठ्यक्रम निदेशक का कार्यभार भी बखूबी निभाया है। आप कार्यकारी संपादक भी रहे हैं। इसके अलावा अमर उजाला पब्लिकेशन में भी आपने लगभग 5 वर्षों तक अपनी अनमोल सेवाएं दी हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु आपको कई सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। तो मैं आदरणीय देवी भ्राता प्रोफेसर गोविंद सिंह भाई साहब जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस सत्र के लिए आप अपने वक्तव्य रखें और अपनी शुभकामनाएं रखें। भ्राता जी,
बहुत 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 धन्यवाद बहन रीना जी। आज की सभा के दो हमारे महत्वपूर्ण लोग चले गए हैं, आदरणीय बहन उर्मिला जी और शकू बहन जी, और यहाँ पर जो बैठे हैं उनमें से भाई सुशांत जी और उमानाथ जी, आशुतोष जी, उर्वशी जी और तमाम हमारे दूसरे जो हैं साथी राजौरी जी और सभी को एक बार फिर से प्रणाम। और यहाँ जो मेरे बहुत ही मित्रगण बैठे हुए हैं उन सबको भी प्रणाम है। आदरणीय संजय द्विवेदी जी जो मेरे हालांकि उम्र में कम है लेकिन मेरे बॉस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में रहे। उधर विकास जी बैठे हुए हैं जो आज तक मैं और कई बहुत अच्छे अच्छे अखबारों में और टीवी चैनलों में काम कर चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं इन्होंने दी हैं। इसके अलावा और हैं जिनका नाम मैं लेना चाहता था, जिनमें से परमार साहब में प्रोफेसर परमार जी जो वाइस चांसलर हैं, 2001 में हम एक से उनको जान रहे हैं, और त्रिपाठी जी, विष्णु त्रिपाठी जी, बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने पिछले सत्र में अपनी बात रखी। और लेकिन त्रिपाठी जी इस बार लकीली जो है वो 6:30 बजे तक भी लोग बैठे हुए हैं, ये अच्छी बात है। आपका एक तरह से दुर्भाग्य है कि आपके समय जो है कम लोग रहे। खैर पिछला सत्र कुछ ज्यादा थोड़ा लंबा खींच गया था सत्र, शायद इसलिए लोग चले गए थे। फिर एक साथी और बहुत पुराने मित्र जो है नारसन जी, जो है पाल नारसन जी रुड़की से बैठे हुए हैं। इसके अलावा और भी सभी लोग हैं, मित्र ही हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ आकर के, मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने आप को यहाँ अध्यक्ष की कुर्सी पर पा करके। एक बार पहले भी मैं इंदौर में गया था ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में, वहां भी बहुत बढ़िया लगा था और यहां भी बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी बात है कि ये लोग जो है वो केवल हेडक्वार्टर में ही नहीं दूसरी जगहों पर भी मीडिया पर बराबर जो है कार्यक्रम करते रहते हैं और मीडिया वालों को बुला करके कुछ न कुछ जो है वो सीख देते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है आज के जमाने में जबकि मीडिया बहुत ही एक तरह से बेलगाम जैसा भी हो गया है और उसके अनेक मतलब अनेक बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है। ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जो विषय है आज का उसमें खास करके तीन शब्द है, एक तो एथिक्स है, जवाबदेही है और आत्मनियंत्रण है। ये तीनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण थे किसी जमाने में और लेकिन अब धीरे धीरे इनका अर्थ जो है वो अर्थ ह्रास हो गया है। भाषा विज्ञान में एक शब्द है अर्थ ह्रास, शब्द का अर्थ जो है जब अपने जो जहां पर वो है वहां से नीचे स्खलित हो जाता है तो उसको अर्थ ह्रास बोलते हैं, तो अर्थ ह्रास जैसा हो गया है। जहां तक ट्रेडिशनल मीडिया है, कन्वेंशनल मीडिया है जिसमें अखबार हैं या कुछ टेलीविजन चैनल हैं, वहां तो फिर भी बात थोड़ा बहुत समझ में आती है, लेकिन मीडिया जैसे सुशांत जी ने भी कहा कि मीडिया और पत्रकारिता अलग अलग हो गए हैं। मीडिया का क्षेत्र बहुत विशाल हो गया है, मतलब 4 लाख करोड़ रुपए का व्यवसाय हो गया है जिसमें से फिल्म से लेकर के ओटीटी से लेकर के अखबार और इंटरनेट और यूट्यूब न जाने क्या क्या उसमें आ गया है, वो सब मीडिया का हिस्सा हो गए हैं। तो ये बहुत विशाल एक तरह से समुदाय है, विशाल इलाका है जो एक तरह से जनता को प्रभावित कर रहा है। इन्फ्लुएंसर की एक नई फौज खड़ी हो गई, मतलब कुछ साल पहले तक ये था कि साहब जो इन्फ्लुएंसर थे वो उसमें एक पत्रकार होता था, जब अखबारों का जाल नहीं था तो एक जिले डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक जिलाधीश महत्वपूर्ण होता था, एक पुलिस एसपी महत्वपूर्ण होता था, एक एमएलए महत्वपूर्ण होता था और उसके साथ एक पत्रकार महत्वपूर्ण होता था। लेकिन आज फिर बाद में इसमें थोड़ा वो जुड़े, आरटीआई एक्टिविस्ट भी जुड़ने लगे और इसके साथ जो है अब इन्फ्लुएंसर की बड़ी बाढ़ आ गई है, वो भी जुड़ गए हैं। तो इसलिए बड़ी बड़ा बदलाव इस फील्ड में आ रहा है, एक तरह से संक्रमण का दौर है, कब इसमें एक स्थिरता आएगी अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बहुत तेजी के साथ जो है वो टेक्नोलॉजी बदल रही है। मैं एक एक शब्द हमारे जो साथी अभी तक बोले हैं उनके बारे में एक एक लाइन बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरी जो ड्यूटी है वो अध्यक्षता की है और आखिर में कुछ रह भी नहीं जाता बोलने के लिए, लेकिन ये है कि एक एक वाक्य भी इन सबके बारे में बोलूंगा तो भी मेरा काम चल सकता है। बहन उर्मिला जी ने एक बहुत बढ़िया वाक्य कहा कि जो बोला गया शब्द है वो वापस नहीं आता है, बहुत बढ़िया उन्होंने बात कही और ये हमारे पत्रकारिता पर, आज की पत्रकारिता पर, खास करके टेलीविजन और यूट्यूब की पत्रकारिता पर बहुत ज्यादा लागू होती है क्योंकि कोई कुछ भी बोल दे रहा है, कोई किसी की भी आलोचना कर दे रहा है और कोई हिसाब किताब नहीं, कोई कंट्रोल नहीं है और मतलब बड़ा अजीब सा अराजकता जैसी दिखाई पड़ती चारों तरफ। तो यहां कबीरदास की पंक्ति याद आती है, वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। तो ये हमारे कबीरदास जी कह गए हैं 15वीं 16वीं शताब्दी में और वो आज तक चल रही है, आज तक इसका महत्व बना हुआ है। लेकिन हमारे जो पत्रकार साथी हैं, हमारे खास करके टेलीविजन के और यूट्यूब के जो पत्रकार साथी हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। राजेश राजौरी जी ने बहुत बढ़िया तरीके से तीनों ही शब्दों की व्याख्या की, उर्वशी जी ने गीता से इसको जोड़ा और साथ ही साथ जो है वो ये भी कहा कि एज इट इज जो है वो रिपोर्ट देनी चाहिए और सत्य की के बारे में भी उन्होंने कहा कि सत्य ही हमको देना चाहिए पत्रकारों को। तो यहां पर थोड़ा सा मैं आगे चल करके इस पर थोड़ी बातचीत करूंगा दो चार मिनट। इसके अलावा सुशांत जी ने जो है वो अपने कीनोट एड्रेस में मीडिया और पत्रकारिता में अंतर बताया, गांधी जी की पत्रकारिता पर भी उन्होंने प्रकाश डाला जो कि बहुत आज बहुत हमारे लिए जरूरी पहलू लगता है। इसके अलावा जो है वो उमा नाथ जी ने मीडिया और समाज के साथ उसका बहुत ही जो घनिष्ठ संबंध है
उसके साथ अपनी बात को जोड़ा, क्योंकि वाकई बात सही है, समाज में गड़बड़ी है, समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में जल्दबाजी है, तो वो बात मीडिया में भी आएगी। अकेले जो है मीडिया को आप अलग थलग करके नहीं देख सकते हैं, समाज का ही वो एक तरह से प्रतिबिंब नजर आता है। इसके अलावा आशुतोष जी ने भी कई बातें कही, उनको देख करके मुझे बिजनेस और नैतिकता की बात याद आई, क्योंकि बिजनेस पत्रकारिता जो है, ये बात उन्होंने नहीं कही लेकिन मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि बिजनेस पत्रकारिता जो है वो इस देश में जो पत्रकारी आचार संहिता है उसके पतन की सबसे पहली गवाह रही है। 1991 में जब नई आर्थिक नीति हमारे देश में आई तो आपने देखा होगा कि कैसे हर्षद मेहता कांड हुआ और भी बहुत सारे कांड हुए उस दौर में, और उस दौर में विदेशियों के लिए, तमाम विदेशी कंपनियों के लिए और प्राइवेट बाजार के लिए हमारी अर्थव्यवस्था खुली थी, तो बड़े बड़े विज्ञापन आने लगे और बड़े पैमाने पर जो बिजनेस के जर्नलिस्ट थे उनको जो है वो रिश्वत देनी शुरू कर दी लोगों ने। और मतलब ये आपको जान के हैरानी होगी कि जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी 1980 के आसपास, तब कोई जाना नहीं चाहता था बिजनेस पत्रकारिता में, आर्थिक पत्रकारिता में कोई नहीं जाना चाहता था। मेरे साथ चार लोग ट्रेनी थे टाइम्स ऑफ इंडिया में, नवभारत टाइम्स में, तो उनमें से एक ने भी ये नहीं कहा कि हमको बिजनेस जर्नलिज्म में जाना है। हर एक आदमी उससे निकन्नी काटता था, क्योंकि शेयर बाजार के भाव, मंडी के भाव, ये सब कौन लिखे, बड़ा बोरियत भरा सब्जेक्ट होता था, कोई नहीं करता था। और आज की तारीख में जो बेहतरीन लड़के हैं, हमारे आईएमसी में मैं था तो वहां जो बेहतरीन बच्चे थे वो इस फील्ड में जाना चाहते थे। तो इस तरह से जो है वहां से बिजनेस जर्नलिज्म से ये शुरुआत हुई थी, और वैसे उससे पहले भी थी लेकिन यहां से कुछ ज्यादा शुरुआत हुई थी। और टाइम इकोनॉमिक टाइम्स को अपनी आचार संहिता पहले पेज पर एकदम संपादकीय की तरह से छापनी पड़ी थी कि हमारे पत्रकारों को ये काम करना है और ये रिश्वत नहीं ले सकते, ये डायरी नहीं ले सकते, ये मिठाई का डिब्बा नहीं ले सकते, ये गिफ्ट नहीं ले सकते, इस तरह की बातें उन्होंने अपने पहले पेज में 1992 या 93 के किसी अखबार में ये लिखी थी, क्योंकि बहुत उससे बहुत बुरा हाल एक तरह से बिजनेस जर्नलिज्म का हो गया था। तो इसी तरह से जो है शेफाली जी ने भी बहुत व्यावहारिक तरीके से अपनी बात रखी, तो मैं अपनी बात को बहुत ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहूंगा कि जो वास्तव में ये समस्याएं हैं ये बहुत गंभीर समस्याएं हैं, और ये आने वाले समय में हो सकता है कि इसका कोई समाधान निकल आए, लेकिन आज की तारीख में ये तीनों ही शब्द जो है बेमानी जैसे हो गए हैं, क्योंकि एथिक्स का कोई पालन नहीं करता है, खास करके जो तमाम बड़ा मीडिया, ज्यादातर मीडिया जो है, मतलब उसमें से आप कन्वेंशनल मीडिया के कुछ अखबारों और टीवी चैनलों को छोड़ दें तो बाकी उसका कोई पालन नहीं करता है। वो लोग कहते हैं कि ये एथिक्स सिखा करके आप क्यों भेजते बच्चों को, ये बच्चे भी हमारे परेशान हो जाते हैं कि वहां जाकर के, वहां तो आपने जो सिखाया था वो तो कुछ और सिखाया था, यहां कुछ और हो रहा है, तो वो भी बड़े निराश हो जाते हैं। तो एथिक्स की समस्या है, जवाबदेही जो है वो किसी की जवाबदेही नहीं है। मैंने कहा कि किस तरह से जो है YouTube वाले कोई भी कुछ भी बोल दे रहा है, कोई जवाबदेही नहीं समझता है। ऐसी आत्मनियमन या आत्मनियंत्रण ये बहुत जरूरी है। सरकार भी कुछ कानून बनाने से पहले डरती है कि क्या किया जाए, इसलिए वो आत्मनियमन या आत्मसंयम की बात करती है, पर वो कोई करता नहीं। आत्मसंयम के लिए मतलब अखबारों के लिए तो प्रेस काउंसिल है, लेकिन बाकियों के लिए कोई संस्था अभी है नहीं। आत्मनियमन जैसी संस्थाएं बनी है लेकिन वो वास्तव में कुछ नहीं करती हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ न कुछ नियमन के लिए सरकार को काम करना पड़ेगा, और जो खास करके रेगुलेशन है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि इससे काम नहीं चलेगा, बिना रेगुलेशन के काम नहीं चलेगा। हालत बहुत खराब हो रही है, बहुत ही गड़बड़ हो रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया भाई साहब। और हमारा ये सत्र बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ, सभी वक्ताओं को और उससे भी ज्यादा सभी श्रोताओं को, क्योंकि सुनने की शक्ति सबके अंदर कूट कूट के नहीं भरी होती है, लेकिन मुझे लगता है आप सबके अंदर वो शक्ति भरी हुई है। आप सबको बहुत 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 दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं बहनों से आग्रह करूंगी कि हमारी सभी मंचासीन मेहमानों को ईश्वरीय सौगात, ईश्वरीय उपहार सब प्रेम भेंट करें। और तब तक मैं आप सबको आह्वान करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि अगला सत्र भी हमारा कुछ ही पलों में सुंदर रूप से शुरू होगा। आप सब इसी तरह से इस माहौल को खुशनुमा बनाकर रखें, अपनी उपस्थिति से यहाँ की गरिमा और ऊर्जा को बनाए रखें। कार्यक्रम के लास्ट में, इस सत्र के अंत में, मैं आप सब के लिए दो लाइन कहना चाहूंगी। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता रहे गुणगान, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, और आपके ओठों पर रहे सदा मुस्कान, सदा मुस्कान। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है। मंच पर हमारे सभी मेहमानों का सम्मान चल रहा है और आज का ये सत्र परमात्मा की अनुकंपा से बहुत सुंदर तरीके से संपन्न हुआ। हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। चलिए आपको लास्ट में एक एक्टिविटी करा देती हूँ। एक बार अपना हाथ थोड़ा इस तरह से आगे करेंगे और तीन बार बोलेंगे वाह वाह वाह, वाह आज का दिन वाह। थोड़ा मजा नहीं आया, जोश के साथ वाह 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 आज का दिन वाह। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, ओम शांति।